الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل. اس سورت کا نام سورة المزمل ہے. اپنے یہاں لوگ لڑکوں کے نام بھی رکھتے ہیں, مزمل, مدثر, ایسے نام رکھتے ہیں. یہ مزمل کا میننگ یہ ہوتا ہے بڑا اور چوڑا کپڑا جو اپنے اوپر لپیٹ لیوے. اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول ایسا تھا کہ جب تہجد کی نماز اور قرآن کی تلاوت کے لیے رات میں اٹھتے تھے تو ایک کمل لمبی چوڑی آپ اوڑھ لیتے تھے تاکہ ٹھنڈی سے حفاظت ہوئے اور وہ کمبل تقریباً 14 ہاتھ لمبی تھی. اور حضور جب یہ کمبل اوڑھ لیتے تھے تو یہ اس بات کی نشانی تھی کہ اب حضور نماز کے اندر مشغول ہو رہے ہیں اور تہجد اور تلاوت میں بیزی ہے. کوئی اس وقت حضور کو دوسرے کام کے لیے ڈسٹرب نہ کرے, خلل نہ کرے. جس طریقے سے کسی نے ہاتھ میں پین لی, کاغذ لیا, تو سمجھ جانے کا کہ آدمی لکھنے بیٹھا ہے. اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ کمل اوڑھ لیتے تھے تو اس بات کی نشانی تھی کہ اب حضور نماز, تہجد, تلاوت, قرآن میں مشغول ہے, کوئی دوسرے کام کے لیے اس وقت ڈسٹرب نہ کرے. تو اس پر سے سورت کا نام سورۃ المزمل ہو گیا. اس میں 20 آیتیں ہیں. سورہ مدثر کے بعد 3 یا 4 نمبر پر نازل ہوئی, یا سورہ قلم کے بعد 4 نمبر پر نازل ہوئی. یہ محبت کی ادائیں ہیں, محبت کی باتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو ایک خاص انداز کے اندر عشق و محبت سے چادر کے لپٹ کر کے آپ کو, چادر کے لپٹنے پر آپ کو آواز دے رہے ہیں, یا ایوہ المزمل. دیکھو ایک قصہ تو میں نے آپ کو سورہ اقرا بسم ربک میں سنایا, دوسرا قصہ سورہ مدثر میں سنایا. وہی حضور پر کیسے قرآن اترنا چالو ہوا اس کے بارے میں, وہ سب یہ تینوں صورتوں کے ساتھ لگے ملے قصے ہیں. سورہ اقرا, سورہ مزمل, سورہ مدثر, سورہ نون والقلم, سب کے ساتھ جڑے جڑے یہ قصے ہیں قریب قریب کے. ایک اور بات واقعہ سنو. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نبی ہونے کا اعلان کیا تو قریش, مکہ کے کافر, اپنی پارلیمنٹ میں جمع ہوئے. مکہ کی کافروں کی پارلیمنٹ کا نام تھا دار الندوہ, اور سب نے آپس میں یہ عنوان رکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کیا لقب دیوے. تو ان لوگوں نے آپس کے مشورے سے ساحر یعنی جادوگر یہ حضور کے لیے نعوذ باللہ طے کیا. اس لیے کہ یہ دوست کو دوست سے, گھر والوں کو گھر والوں سے جدا کرنے کا کام کرتے ہیں ایمان کی وجہ سے. نعوذ باللہ ایسی ان کی گندی سوچ تھی. جب یہ خبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی تو حضور کو بہت رنج ہوا. और गम की हालत में हुजूर कपड़े में लिपट गए। और ऐसा होता है कि इंसान को जब कोई गम होता है तो इंसान इस तरीके से अपने ऊपर कपड़ा लपेट लेता है। तो अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुश करने के लिए बड़ी नरमी से, बड़ी मोहब्बत से इस अंदाज के अंदर खिताब फरमाया, या अय्युहल मुज़म्मिल, ए कंबल ओढ़ने वाले। अल्लाहु अकबर। फिर आगे फरमाया, ए या अय्युहल मुज़म्मिल, ए चादर में लिपटने वाले, कुमिल लैल इल्ला कलीला, रात का थोड़ा हिस्सा छोड़कर बाकी रात इबादत के लिए खड़े हो जाया करो। रात में क्या होता है, तन्हाई होती है, इंसानों की भीड़ भाड़ नहीं होती है। ऐसे वक्त में कुरान पढ़ो और कुरान को जरा ऊंची आवाज से पढ़ो, इसलिए कि अल्लाह ने दो तरह की दुनिया बनाई है। एक ये जाहिरी दुनिया जो हमको दिखती है इंसानों की, तो उनको तो दिन के वक्त में आप कुरान सुनाओगे, लेकिन अल्लाह की एक दूसरी दुनिया है, गैबी दुनिया, उसमें जिन्नात है, फरिश्ते हैं और अजीब अजीब दूसरी मखलूकात भी है। तो आप रात को कुरान पढ़ेंगे तो उसकी बरकत से अल्लाह की जो गैबी मखलूक है, जिन्नात वगैरह, उनको भी कुरान सुनने का मौका मिलेगा और वो भी कुरान सुन करके जो है फायदा उठाएंगे और उनकी जिंदगी भी ईमान वाली हो जाएगी। और देखो, रात में जागना और ठंडे ठंडे पानी से वुजू करना, तहज्जुद की नमाज में खड़ा होना और कुरान शरीफ पढ़ना, ये भी अपने नफ्स और आत्मा के साथ एक तरह का जिहाद है। ये भी एक जिहाद है अपने नफ्स के साथ, आत्मा के साथ, कि नींद छोड़ के उठना, वुजू करके तहज्जुद की नमाज पढ़ना। और दूसरी बात इस सूरत में यह है कि इंसान को हर वक्त अपने मालिक की बंदगी में रहना चाहिए। तीसरी बात यह है कि अल्लाह का जिक्र हमेशा करना चाहिए, जिक्र से जबान को ताजा तर रखना चाहिए। चौथी बात ये, दुनिया के तमाम गलत नामुनासिब ताल्लुकात को तोड़ना और अल्लाह से ताल्लुक मजबूत करना। पांचवी बात, हर काम में भरोसा अल्लाह पर करना। छठी बात, मखलूक बंदों की तरफ से कोई तकलीफ आवे, जुल्म आवे तो सहन और सबर करना। सात, दुनियादारों के साथ उठना बैठना कम रखो, दुनियादार लोगों के साथ उठना बैठना कम रखो। तो अल्लाह ने क्या फरमाया कि कुमिल लैल इल्ला कलीला, रात का थोड़ा हिस्सा छोड़कर बाकी रात इबादत के लिए खड़े हो जाया करो। ये जनरल ऑर्डर आया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके प्यारे लाडले सहाबा रात में ज्यादातर तहज्जुद पढ़ते थे, यहां तक के पैर सूज गए, कदम पर वरम आ गया। तो फिर इस सूरत के अखीर में अल्लाह ने हुक्म दिया, फकरऊ मा तयस्सर मिनहु, कि अब इतना बोझ नहीं, जितना हो सके इतना जो है रात के अंदर कुरान पढ़ो, तहज्जुद पढ़ो। देखो, एक तो होता है हमारे बदन के ऊपर का कपड़ा और एक कपड़ा क्या है, रियाजत, इबादत का कपड़ा। और उस कपड़े का हक अदा करो, यानी रात के अंदर सोना बहुत प्यारा लगता है, नींद बहुत अच्छी लगती है, तो उसको जो है छोड़ो नींद को और अल्लाह के सामने इबादत में लग जाओ। इल्ला कलीलन के अलग अलग मीनिंग है। एक मीनिंग उसका ये भी है कि रोजाना रात को मगरिब, ईशा, फजर, तहज्जुद, अवाबीन ये सब पढ़ने का, मगर थोड़ी रात, यानी बीमार होवे, सफर में होवे और दिन के अंदर दुश्मनों से मुकाबले की तैयारी में होवे या मजलूम को जालिम से बचाने के काम में बिजी होवे, तो अगर दिन के अंदर बहुत बिजी होवे और ऐसी रात के अंदर उठने की ताकत न हो, तो ऐसी रात में तहज्जुद नहीं पढ़ोगे तो चल जाएगा, अल्लाह ऐसी रात में सवाब दे देंगे। तो अगर दिन में बहुत बिजी थे, कैसे कामों में, बीमार थे, बीमार है, सफर है, या दिन के अंदर दिन के दूसरे अहम काम जैसे कि दुश्मनों से मुकाबला, उसकी तैयारी, जालिम लोगों के जुल्म से लोगों को बचाना, और उसकी वजह से तहज्जुद नहीं पढ़ सके, तो अल्लाह ताला तहज्जुद का सवाब अता कर देंगे। दूसरी बात, अगर खड़े खड़े तहज्जुद नहीं पढ़ सकते तो बैठ करके पढ़ो। जिंदगी के आखिरी दिन के दिनों में हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबीयत की कमजोरी की वजह से और बदन के थोड़ा भारी वजनी होने की वजह से बैठकर तहज्जुद भी पढ़ लेते थे। तीसरी बात समझो, पूरी रात तहज्जुद पढ़ना जरूरी नहीं है। हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तीन तरीके की तहज्जुद साबित है, आप जिस तरीके पर अमल कर सको करो। कभी रात के शुरू हिस्से में, कभी रात के बीच में, कभी रात के अखीर में, यानी सुबह सादिक से पहले। इसीलिए जिन लोगों को हिम्मत हो, यकीन हो, वो तो सुबह में उठकर सुबह सादिक से पहले तहज्जुद पढ़े जी, वो सबसे टॉप क्वालिटी की तहज्जुद। जिन लोगों की बीच रात में किसी वजह से आंख खुल जावे, जैसे बाज लोगों को शुगर ज्यादा हो तो आधी रात में पेशाब के लिए उठना पड़ता है, तो वो उठे तो उस वक्त तहज्जुद पढ़े, पहले भी सोए, बाद में भी सोए, बीच में तहज्जुद पढ़ ली। जो लोगों को सुबह में उठने न उठने का यकीन है कि अपने तो डायरेक्ट फज्र की अजान पे उठेंगे, वहां तक उठ नहीं पाएंगे, ऐसे लोग ईशा की नमाज से फारिग होकर या सोने से पहले पहले तहज्जुद पढ़ लेवे, तो भी इंशाल्लाह तहज्जुद अल्लाह के यहां कबूल हो जाएगी। निस्फहु, आगे क्या फरमाया, निस्फहु अविन्कुस मिन्हु कलीला, रात का आधा हिस्सा इबादत के लिए खड़े हो या उसमें से भी कुछ कम कर लो। देखो, बास दिन रात बिल्कुल इक्वल, बराबर बराबर, सरखे सरखे होते हैं, यानी जितने कल्लाक रात के इतनी कल्लाक दिन के। जैसे कि साल में ठंडी खत्म हो रही है, खत्म हो गई, गर्मी शुरू हो रही है वो दिन, तो उसके अंदर जो, यानी रात भी 12 घंटे की, दिन भी 12 घंटे का करीब करीब, तो उसमें निस्फहु आ जाएगा, आधी रात, और उसमें सब आ गया, यानी मगरिब, ईशा, फजर, तहज्जुद, अवाबीन, ये जितना भी टाइम लगेगा उसका टोटल कर लो, आधा हो गया तहज्जुद के लिए, तो आयत पर अमल हो गया। और बास क्या होता है, ठंडी की मौसम, उसके अंदर रात लंबी, दिन छोटा, तो उसके अंदर क्या करने का, कि रात के अंदर चौथाई यानी 1/4 एक चतुर्थांश रात अगर इबादत कर लेंगे तो अभी बहुत कुछ इबादत हो जाएगी और बहुत कुछ नेकियां मिल जाएगी। कितनी आसान तरतीब अल्लाह ताला ने हमको बयान फरमा दी। औजिद अलैहि या उससे कुछ ज्यादा कर दो, ज्यादा भी आधी रात जैसा मौका ऐसे देखकर ज्यादा, जैसे कि रमजान में हम लोग ज्यादा रात तक इबादत करते। वरत्तिलिल कुरान तरतीला और कुरान को इत्मीनान से साफ साफ पढ़ा करो। इसको समझने से पहले एक बात और समझो, तहज्जुद में उठे ने बहुत नींद आती होवे ने तो सो जाने का, इसलिए कि बहुत नींद आती होवे ने तुम नमाज पढ़ने जाओगे ने तो दुआ की जगह बद्दुआ करोगे और कुरान की आयतों में भी इधर उधर ऊंधा मारोगे, गड़बड़ करोगे सो जाने का। हदीस में भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तबीयत के अंदर चुस्ती फुर्ती फॉर्म और मूड हो ऐसे वक्त पर नमाज पढ़ो, और जब दिल न लगे ने न ऊंघ बहुत आवे तो सो जाओ ताकि तुम ऊंधा न मारो। और देखो पुराने जमाने के अंदर आज की तरह घड़ी नहीं थी, घड़ियाल नहीं थी, तो टाइम फिक्स आधी रात पाव रात ऐसा बहुत मुश्किल होता था, इसीलिए कुछ कम ज्यादा हो जावे तो बहुत वांदा नहीं, हरज नहीं, लेकिन रात में कुछ न कुछ अल्लाह की इबादत करो। ये अल्लाह ताला ने यहां पर हुक्म दिया। इस पर बाज बुजुर्गों ने बहुत अच्छी बात लिखी है, वो मैं आपको सुनाता हूं। हजरत मुफ्ती मोहम्मद शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने मारिफुल कुरान में नकल किया कि जो उलमाए किराम बुजुर्गाने दीन लोगों को इल्म सिखाते हैं, लोगों को अखलाक सिखाते हैं, लोगों की इसलाह करते हैं, उनको चाहिए कि अपने सारे काम दिन में रखे और रात का वक्त अल्लाह के सामने इबादत के लिए फारिग रखे। अल्लाह अकबर। हाँ कभी कभी रात में कोई जरूरत हो और रात में भी तालीम तबलीग सीखना सिखाना हो तो हरज नहीं, बाकी कोशिश करो कि रात अल्लाह के सामने इबादत में हो। हाँ ये बहुत जरूरी है। वबिल्लैलि रुहबान वबिन्नहारि फुरसान। एक रोमन ईसाई जासूस सहाबा के बीच में रहा था, उसने सहाबा की जो रिपोर्ट लिखी ने उस रिपोर्ट के अंदर ये लफ्ज है कि रात को अल्लाह के सामने ऐसे खड़े होते हैं कि सारी दुनिया को भूल जाते हैं, और दिन में अपने घोड़े की पीठ पर होते हैं और अल्लाह के दीन को फैलाने की मेहनत में ये लगे रहते हैं। बस अल्लाह हमें रात की इबादत अता फरमा देवे, रात को अल्लाह के सामने मांगना अता फरमा देवे। एक बात सुना दो, ऐसे तो तहज्जुद के बहुत फजाइल है, बहुत फजाइल, एक मुस्तकिल बयान इसके ऊपर हो सकता है। जब तक उम्मत रात को अल्लाह के सामने रोती थी मांगती थी वहां तक सुबह में अल्लाह खुशी खुशी सुनाते थे और दिखाते थे, जब से उम्मत ने रात का रोना और मांगना छोड़ दिया दिन में उम्मत को रोजाना रोने की और गम की खबरें सुनने को मिलती है। भाइयों बहनों रातों में अल्लाह के सामने नमाज पढ़ के दुआएं करो, सवाल करो, मांगो, अल्लाह नवाजेंगे, खूब नवाजेंगे, खूब नवाजेंगे। और दिन में इज्जत खुशी और सरबुलंदी की खबरें अल्लाह ताला सुनाएंगे। सुभान अल्लाह कितनी बड़ी बात है भाई, अल्लाह हम सबको इसकी तौफीक और सआदत अता फरमावे। तहज्जुद बहुत जरूरी भाई, तहज्जुद की नमाज। तो आगे फरमाया वरत्तिलिल कुरान तरतीला, कुरान को इत्मीनान से साफ साफ पढ़ा करो। अब समझो अच्छी तरीके से। तरतील का माना होता है बहुत नरमी से सहूलत के साथ कोई कलमा कोई वाक्य बोलना। इसका मतलब ये कि कुरान पढ़ने में जल्दी नहीं करने की। बाज लोग कुरान पढ़ने में ऐसी सुपर फास्ट चलते हैं कि आयत का जो एंड होता है ना, जहां आयत पूरी होती है, वो भी पूरा समझ में नहीं आता है। भाई ऐसा क्यों कुरान के साथ जुल्म करते हो? कुरान पढ़ना है और सही पढ़ना है और साफ साफ पढ़ना है। अच्छी आवाज भी हो अपनी ताकत के मुताबिक तो बहुत अच्छी बात है। हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला किसी की किरात और तिलावत को इतना ऐसा नहीं सुनते जैसा कि अच्छी आवाज से जोर से कुरान पढ़ने वाले नबी की तिलावत को सुनते हैं। इसीलिए जो आदमी अच्छी आवाज से बेहतरीन अंदाज में थोड़ी आवाज ऊंची करके कुरान पढ़ता है, अल्लाह को वो कुरान बहुत पसंद है। और नमाज में भी कुरान सही पढ़ना और नमाज के बाहर जब हम कुरान पढ़े तब भी सही सही कुरान पढ़े, उस वक्त पर भी गड़बड़ी ना करे, सही तौर पर कुरान पढ़े। इन्ना सनुल्की अलैका कौलन थकीला, हम अनकरीब तुम पर एक वजनदार कलाम उतारने वाले हैं। वजनदार कलाम यानी कुरान, उसमें हलाल है हराम है जायज है नाजायज है सब कुछ है। और जाहिर है कि पूरी शरीयत के ऊपर अमल करना जरा भारी काम है। और तहज्जुद की नमाज जब इंसान पाबंदी के साथ पढ़ता है तो उसकी बरकत से भारी काम करना इंसान के लिए आसान हो जाता है, सहूलत वाला हो जाता है भारी काम करना। आगे फरमाया, इन्ना नाशिअत अल-लैल हिया अशद्द वतअं वअक्वम क़ीला, और यकीनन रात को उठना वो ऐसा मुअस्सिर अमल है, यानी उससे तासीर पैदा होती है जिससे नफ्स आत्मा बड़ी अच्छी तरह कुचलता है और बात भी सीधे तरीके पर निकलती है। देखो रात में किसी भी वक्त पर तुम नमाज पढ़ो, किसी भी वक्त नमाज पढ़ो तो अल्लाह ताला उसकी बरकत से एक रूहानी कैफियत अता फरमाते हैं और उसकी बरकत से नफ्स को आत्मा को काबू में रखना आसान हो जाता है, नाजायज ख्वाहिशात को रोकना आसान हो जाता है, गुनाहों से बचना आसान हो जाता है और इंसान बहुत आसानी से बुराई गुनाह गंदी चीजों से बच जाता है। इन्न लक फिन्नहारी सबहन तवीला, यकीनन दिन में तो तुम्हारे साथ लंबी मशगूलियात लगी रहती है। यानी ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दिन में तो आप बहुत बिजी होते हैं, बहुत मशगूल बहुत बिजी आप रहते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिन में काहे में बिजी रहते थे? अल्लाह की बात अल्लाह के बंदों को सिखाना, लोगों को कुरान सिखाना, तबलीग करना, खिदमत करना, ये सब काम में हुजूर बिजी रहते थे। कोई खेती बाड़ी थोड़ी करते थे, कोई दुकान थोड़ी करते थे हुजूर। तो कहा दिन का वक्त इसके लिए और रात का वक्त इबादत के वास्ते। तो गोया के हमेशा जिक्र करो, जिक्र में सुस्ती न होवे और जबान से भी जिक्र, दिल में भी अल्लाह का ध्यान और बॉडी से हाथ से पैर से आंख से कान से अल्लाह को राजी करने वाले काम करो, उसके अलावा कोई काम नहीं। यानी अल्लाह के नाराज करने वाले कोई काम नहीं करने के। वधकुरी स्म रब्बिक वतबत्तल इलैहि तबतीला। और एक बात समझो, हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिन भर खालिस दीन के काम में रहते थे, लोगों को ईमान की दावत देते थे, लोगों को ईमान की तबलीग करते थे। फिर रात को अल्लाह ने हुक्म दिया कि इबादत के लिए तन्हाई में खड़े रहो। ये बहुत जरूरी है भाई। आगे फरमाया वदकुर इस्म रब्बिक वतबत्तल इलैहि तबतीला, और अपने रब का नाम जिक्र करो और सबसे अलग होकर पूरे तौर पर अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हो, यानी पूरे तौर पर अल्लाह के बन कर के रहो। अल्लाह के बन के रहना यानी खालिस अल्लाह के लिए इबादत करना, सिर्फ अल्लाह के लिए इबादत करना, अल्लाह के सिवा किसी मखलूक को नफा नुकसान का मालिक न समझो, अल्लाह के सिवा किसी को हाजत पूरी करने वाला न समझो, अल्लाह के सिवा किसी को मुश्किल दूर करने वाला न समझो, और जो चीज अल्लाह के पास है उसी पर ध्यान दो। अल्लाह के पास जन्नत है, अल्लाह के पास अल्लाह की रजा है, उसी को हासिल करने की फिक्र करो और जहन्नम से बचने की फिक्र करो। और अल्लाह के साथ ताल्लुक और कॉन्टेक्ट इतना मकपक्का होवे कि तमाम ताल्लुक, बीवी बच्चे दोस्त अहबाब कारोबार पार्टनर उस्ताद मुरीद शेख पीर, सबसे ज्यादा ताल्लुक अल्लाह की जात के साथ हो। अजीब चीज फरमाई। और इस आयत में देखो एक बात समझो, अल्लाह ने क्या फरमाया, वदकुर इस्म रब्बिक यानी अल्लाह का नाम। मालूम हुआ कि अल्लाह 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 इस तरह जिक्र करना ये भी बहुत जरूरी है। जितना ज्यादा अल्लाह का नाम बोलेंगे इतनी अल्लाह की मोहब्बत दिल में आएगी, अल्लाह का इश्क दिल में आएगा, अल्लाह का प्यार दिल में आएगा। इसीलिए वस्कुर इस्म रब्बिक अल्लाह 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 के नाम का जिक्र भी खूब करो। ये आठ आयत हो गई सूरह मुज़म्मिल की। अब जरा इसमें आई हुई अहम बातों को जरा हम डिटेल में तफसील से हम थोड़ा बहुत समझने की कोशिश करते हैं। अल्लाह ताला उसकी बरकतों से खैरात से आपको मुझको पूरी उम्मत को माला माल फरमा देवे। देखो एक बात जो इस सूरत में फरमाई गई वो तरतील है कि कुरान को सही पढ़ो, अच्छा पढ़ो, जैसा जिब्राइल अमीन ने अल्लाह के यहां से लाकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिखाया और प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को सिखाया, सहाबा ने बाकी उम्मत को सिखाया, इसी तरीके से कुरान पढ़ना जरूरी है। और उसी का खुलासा तरतील है। अब तरतील को जरा डिटेल से समझो। नंबर एक बात मैं आपको कहूं कि कुरान के जो हुरूफ है, शब्द है, अल्फाज है, वाक्य है, आयत है, पंक्ति है, उसको सही सही पढ़ो। अरबी जुबान बहुत नाजुक जुबान है, बहुत नाजुक जुबान, मामूली मामूली बात में मीनिंग बदल जाता है। जैसे अरबी के दो शब्द मैं आपको बताऊं, कल्ब कल्ब कल्ब, बड़ा काफ कल्ब, छोटा काफ बड़ा काफ कल्ब यानी दिल, छोटा काफ कल्ब यानी कुत्ता। देखो काफ और काफ करने के अंदर कितना मीनिंग बदल गया। तो अरबी जुबान बहुत नाजुक है, उसको बहुत समझ के पढ़ना पड़ेगा। नंबर दो, वक्फ यानी कहाँ आयत पूरी होती है, कहाँ रुकने का, कहाँ नहीं रुकने का, ये भी बहुत ध्यान रखना जरूरी है। वरना कोई आदमी यूं आयत पढ़े या अय्युहल्लज़ीना आमनु ला तक़रबुस्सलाह, यहां वक्फ कर डाला, तो ये तो कैसे वक्फ कर डाला, कुछ अक्ल है कि नहीं। इसलिए कि मीनिंग पूरा बदल जाता है। तो कहां वक्फ करने का, कहां रुकने का, कहां ठहरने का, कहां से आयत शुरू करने की, ये सब सीखना पड़ता है। नंबर 3, जबर, जेर, पेश, तशदीद, गुन्ना, ये सब चीजें अच्छी तरीके से अदा करना। और ये सब चीजें हैं ने, उसके लिए आपको बाकायदा सही तालीम हासिल करनी पड़ेगी, ये तीनों चीज के लिए। इसीलिए जिसका भी कुरान सही ना होवे, तो मैं कहता हूं किसी सर्टिफाइड कारी साहब के पास बैठ करके अपना कुरान सही कर लो। अच्छी आवाज अलग चीज है और सही कुरान पढ़ना अलग चीज है, दोनों में फर्क है। नंबर 4, कुरान पढ़ते वक्त आवाज को थोड़ी थोड़ी ऊंची रखना कि कम से कम कान तक आवाज पहुंच जावे। नंबर 5, अच्छी आवाज से पढ़ना, यानी खूब मेहनत करो कि अच्छी आवाज से हम कुरान पढ़े, अपनी आवाज को अच्छा करके पढ़ो। नंबर 6, मद, उसमें मद होता है, ये खाने का मद मत समझियो, हनी शहद वो नहीं, मद, मद का माना क्या, वो खींचते हैं ने, वो उलाइक अला हुदम मिर रब्बिहिम, तो ये जो खींचते हैं वो मद कहलाता है। और बाज मत 5 अलीफ, 4 अलीफ, 3 अलीफ, 2 अलीफ, 1 अलीफ, इतना खींचना रहता है। तो तशदीद, मद, ये सब चीज का ख्याल रखने का। नंबर 7, कुरान मजीद में अगर कोई डर वाली आयत आवे कि जिसमें जहन्नम की बात हो, अजाब की बात हो, तो वहां रुक करके अल्लाह से दुआ करने की, ए अल्लाह जहन्नम से हिफाजत फरमा, अजाब से हिफाजत फरमा। और अगर कोई अपने फायदे वाली बात आवे तो वहां रुक करके भी दुआ कर लेने की, जैसे जन्नत की बात आई तो दुआ करने की, अल्लाह जन्नत दे दे, हूर दे दे, ऐसी दुआ करने की। जहां रोजी रोटी की बरकत की बात आवे तो वहां रुक करके रोजी रोटी की बरकत की दुआ कर लेने की, जैसे इल्म की बात आई तो वहां दुआ कर लेने की। वकुर रब्बी ज़िदनी इल्मा, ए अल्लाह मुझे इल्म में ज्यादती अता फरमाओ। और एक बात है, कुरान को समझ करके पढ़ो, ध्यान से पढ़ो, गौर करके पढ़ो कि मेरे अल्लाह मुझको क्या कहना चाहते हैं। आज हम लोग माँ बाप की बात सुनते हैं, समझ में नहीं आते थे कि अब्बा क्या बोला आपने, अम्मी क्या बोला आपने, टीचर की बात समझ में नहीं आती, क्या टीचर आपने क्या कहा, सर मैडम आपने क्या कहा, तो अल्लाह क्या कह रहे हैं वो समझ में आता है कि नहीं आता है वो सोचो। और उसके लिए कुरान की तफसीर पढ़नी पड़ेगी, कुरान का मीनिंग पढ़ना पड़ेगा। उसके लिए ये हमारा ये मुबारक सिलसिला अल्लाह के फजल से चल रहा है, और उर्दू गुजराती दोनों जबान में अल्लाह की तौफीक से कुरान का तर्जुमा और कुछ कुछ तफसीर लिख दिए, वो पढ़ो और ये सुनो और समझो। कुरान की तफसीर की मजलिसें कायम करो, हर हर मस्जिद में, हर हर गांव में, हर हर महल्ले में, और ऐसी मजलिस में जाओ तो कुछ समझ में आएगा कि कुरान में अल्लाह क्या कहना चाहते हैं। आज तो अल्लाह क्या कहना चाहते वो हमको पता ही नहीं है। एक मर्तबा हजरत उम्मे सलमा रदी अल्लाह ताला अन्हा को, जो हमारी माँ है उम्मुल मोमिनीन, उनको किसी ने पूछा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान किस तरह पढ़ते थे, तो उन्होंने क्या कहा कि जितनी भी हरकत यानी जबर जेर पेश है उसको पूरा अदा करते थे, अच्छी तरीके से पढ़ते थे। और एक बड़ी बात ध्यान रखो, कुरान की आयत को जब पढ़ो तो उसमें ये ध्यान करो कि मेरे अल्लाह ताला मुझको कह रहे हैं, मेरे अल्लाह मुझको कह रहे हैं, मुझे अल्लाह ताला जो है बात फरमा रहे हैं, ये सोचो तो जो है हमारे दिल दिमाग में इंशाल्लाह बड़ा फायदा होगा। ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज है। तो कुरान की तिलावत में तदब्बुर का मर्तबा ये है कि हर खिताब, हर किस्से में अपनी जात को मुखातब रखे कि मेरे अल्लाह मुझसे हुक्म दे रहे हैं, ये है आला तरीका। आगे फरमाया, इन्ना सनुल्की अलैक कौलन थकीला, यानी हम कंटिन्यू एक के बाद एक आयत सूरत तुम्हारे ऊपर उतारते जाएंगे और उसकी वजह से तकलीफ भी होगी। वाकियतन कुरान के आने के ऊपर हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बड़ी तकलीफ उठानी पड़ती थी। जैसे घंटा बजता है ना घंटी घंटा, इस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक आवाज सुनाई देती थी। और हुजूर जितने बाहर के अवयव अंग आजा है और जितने अंदर के बातिन के अवयव और आजा है, पूरा ध्यान लगा करके हजरत जिब्रेल अमीन से कुरान सुनते थे। और हुजूर के बदन में गर्मी इतनी होती थी कि ठंडी की मौसम में भी हुजूर को पसीना हो जाता था। और मदीना की ठंडी तो उमरा हज में वहां जाके देखो तो पता चले मक्का मदीना की ठंडी। ऐसी सखत ठंडी में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशानी पर पसीना आता था। बाज मरतबा तो हुजूर बेहोश हो जाते थे। और अगर हुजूर ऊंट मुबारक पर बैठे हो, ऊंटनी मुबारक पर बैठे हो, घोड़े पर बैठे हो, तो इतना वजन होता था कुरान का कि वो ऊंट जानवर भी गिर जाता था। एक ऊंटनी हुजूर की अजबा या कस्वा वो ऐसी थी कि उसको जो है ने कुदरती बात थी कि वो गिरती नहीं थी, बल्कि अपना पांव टेढ़ा यानी वाका करके जमीन पर टेक लगा देती थी और उसको आदत हो गई थी। उसको भी असर तो होता था, वजन तो उसको भी लगता था, लेकिन उसको आदत हो गई थी इसलिए थोड़ा उसको दूसरों के मुकाबले के अंदर आसान था। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रान मुबारक, अगर किसी की रान और जांग पर है और कुरान उतरना शुरू हुआ तो इतना वजन होता था कि पड़ोस वालों को ऐसा लगता था कि मेरी जांग टूट जाएगी, मेरी रान के ऊपर कोई पहाड़ आ गया, इतना वजन होता था। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूरानी चेहरा लाल हो जाता था, सांस चढ़ने लगता था और उसकी आवाज सांस चलने की दूर से सुनाई देती थी। इतनी तकलीफ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को होती थी। और कितनी हुजूर के सामने तकलीफ की बातें, एक तो कुरान जिब्रेल अमीन से सुनने का, फिर मक्का मदीना में इतने दुश्मन डेंजर कि हुजूर उनको जाके कुरान सुनाएंगे तो वो मजाक उड़ाना चालू करेंगे, वो दुश्मनों की तकलीफ का खतरा। फिर कुरान के अंदर जो अल्लाह ने बारीक बारीक जो पॉइंट्स नुक्ते समझाए उसको समझने का, उसकी अजीब बातों में गौर करने का, ये सब चीजें अल्लाह के फजल के बगैर नहीं हो सकती। फिर कौन सी आयत मोहकम, कौन सी मुतशाबे, कौन सी नासिक, कौन सी मोहका मनसूख, कौन सी जाहिर, कौन सी मुअव्वल, ये सब चीजें अलग करने की। और बड़ी एक बात ये होती थी कि कुरान में जो हुक्म आया उसका मुसलमानों को सिखा करके अमल कराना, कुरान में जो चीजों से रोका गया वो मुसलमानों को बताकर उनसे रोकना, ये बहुत बड़ा काम होता था। उसको अम्र बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर कहते हैं कि कुरान में जितनी अच्छी बातें बताई गई वो मुसलमानों को सिखा करके उनसे अमल कराने का, और जितनी बुरी बातें आई वो बता करके उससे रोकने की कोशिश करना। तो जितना हो सके इतना ये काम भी करना था। और काफिर मुखालिफ लोग वो तो कुरान को देख करके गधों की तरह भागते थे, जैसे सूरत पिछली में गुजरा कि जिस तरीके से शेर को देखकर गधे भागते हैं, इस तरह ये मुनाफिक काफिर लोग कुरान सुनकर के भागते थे, अजीब हालत होती थी। तो इस तरीके का मामला हुआ करता था। तो बड़ी अजीब चीज थी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वास्ते। तो इन्ना सनुल्की अलैका कौलन सकीला, इसकी एक तफसीर जो शाह अब्दुल अजीज साहब ने की है कि कौले सकील से मुराद शफाअत, कि कयामत के दिन अल्लाह की बारगाह में सिफारिश करना ये बड़ी भारी बात होगी, कोई नबी नहीं कर सकेंगे और अकेले हमारे हुजूर अल्लाह के सामने सिफारिश करेंगे। तो कयामत के मैदान में अल्लाह को सिफारिश करना कि अल्लाह मखलूक परेशान है, आप हिसाब किताब शुरू कर दो, ये सिफारिश करना कितनी भारी बात होगी कि कोई नबी नहीं कर सकेंगे, सब माजरत कर देंगे, सब सॉरी कहेंगे। और हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो काम उस कयामत के दिन करेंगे। इन्ना नाशी अतल्लैल, ये नाशी किसको कहते हैं? नई पैदा होने वाली चीज को नाशी कहते हैं। रात को उठना, कुरान को थोड़ी आवाज ऊंची आवाज से पढ़ना, वुजू करना, वुजू के लिए पानी, मिसवाक, इस्तिंजा, ये सब चीजें बहुत भारी है, बहुत मुश्किल है। इसलिए कि रात जो है ना आराम का वक्त है और सोने का वक्त है, खास करके बीवी साथ में हो, नरम बिस्तर हो, एयर कंडीशन हो, या ठंडी के मौसम में गरम गरम जो है गोदड़े हो, लिहाफ हो, ये सारे मजे को छोड़ करके उठना अल्लाहु अकबर हो कोई आसान काम थोड़ा ही है। और गर्मी के मौसम के अंदर दिन में गर्मी लगी तो रात में ठंडक के वक्त सोए हुए तो उठना ये कोई आसान काम नहीं है। लेकिन जो आदमी रात को उठता है तो अल्लाह ताला उसको नूर और बरकत से मालामाल फरमा देते हैं। इसलिए कि हदीस में आता है कि यंजिल रब्बुना तबारक व तआला कुल्ल लैलतिन इलस समाई दुनिया, हमारे अल्लाह रोजाना रात को, देखो रोजाना हदीस में, सिर्फ शबे कदर पंद्रहवीं शाबान नहीं, रोजाना रात को ये जो आसमान हमको पहला दिखता है वहां तशरीफ इजलाल, रूहानी इजलाल फरमाते, इनायत फरमाते हैं। हीन यबका सुलुसुल लैल आखिर, जबकि रात का आखिरी तीसरा हिस्सा बाकी रहता है, यानी पूरी रात के कल्लाक गिनो, घंटे गिनो, और वन थर्ड एक तृतीयांश जो आखिरी होता है वो उस वक्त के ऊपर। और अल्लाह ताला फरमाते हैं फयकुलु मन यदउनी फअस्तजीबु ला, कौन मुझसे दुआ करता है मैं उसकी दुआ कबूल करूंगा, मन यसअलनी फौती, कौन मुझसे सवाल करेगा मैं दूंगा, मैं यस्तगफिरुली फाग़फिरुला, कौन माफी मांगता है मैं मगफिरत कर दूं उसकी, फजर तक अल्लाह ऐलान फरमाते हैं। और एक हदीस में आता है इन्न फिल लैली साआ ला युवाफिकुहा अब्दुन मुस्लिम यसअलुल्लाह ताला खैरन मिन खैरिद दुनिया वल आखिरा इल्ला अताहु इय्याह वज़ालिका कुल्ल लैलतिन, कि रोजाना रात में एक घड़ी ऐसी होती है, एक कुछ वक्त ऐसा होता है कि कोई भी मुसलमान बंदा अल्लाह से दुनिया की भलाई मांगे, आखिरत की भलाई मांगे, अल्लाह उसको दे ही देंगे। और ऐसा हर रात में ही होता है, अजीब अजीब बात। हमारे बुजुर्गों में, अवलिया अल्लाह में, कुतुब अब्दाल में एक बहुत बड़ा नाम है हजरत जुनेद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह, हमारे मशाइखीन में से हैं। फरमाते हैं जब उनका इंतकाल हो गया तो किसी ने ख्वाब में देखा, पूछा हजरत क्या गुजरी, तो क्या इरशाद फरमाया कि सारी इबादतें बस इधर उधर हुई, कुछ काम नहीं आया मगर वो रकातें जो रात के अंधेरे में पड़ी थी बस वो काम आ गई। इसीलिए रात के अंधेरे में जब कोई नहीं देखता हो, बस अल्लाह को राजी करने के लिए तहज्जुद पढ़ो, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उसकी बरकत से बहुत नवाज देंगे। और कुरान की तिलावत जब रात के आखिरी हिस्से में इंसान करता है तो ये उलमा के लिए है कि अल्लाह ताला उसकी बरकत से कुरान का इल्म उनके ऊपर बहुत खोलते हैं। इसलिए कि शोर नहीं होता, और जो खाना खाया वो भी हजम होके नीचे उतर गया तो खाने का असर भी नहीं होता है, और इसी वजह से रात के आखिरी हिस्से में सच्चे सच्चे ख्वाब नजर आते हैं। इसीलिए रात के हिस्से में कुरान पढ़ो, तहज्जुद पढ़ो, तो नमाज तहज्जुद का नूर और कुरान की तिलावत का नूर, दो नूर जमा हो जाएंगे तो इंशाल्लाह आदमी की जिंदगी, दुनिया, आखिरत, कबर सब नूरानी बन जाएगी। एक हदीस के अंदर आया है कि तहज्जुद पढ़ो इसलिए कि वो पहले जमाने के नेक लोगों का तरीका है और उसकी बरकत से तुम तुम्हारे रब के नजदीक पहुंच जाओगे, तुम्हारे गुनाह माफ हो जाएंगे और गुनाह तुम्हारे मिट जाएंगे। कितनी बड़ी नेमत है और कितनी बड़ी अल्लाह की नवाजिश है। देखो आगे फरमाया, इन्नल कफिन्नहारी सबहन तवीला। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिन में बहुत बिजी और मशगूल लेते थे। जरा मैं आपको हुजूर का टाइम टेबल सुना दूं, सुबह से लेकर 24 घंटे का टाइम टेबल, बहुत शॉर्ट में। क्या टाइम टेबल है, खुद शाह अब्दुल अजीज साहब का लिखा हुआ बहुत प्यारा टाइम टेबल है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजर से लेकर इशराक तक, जहां आपने फजर पढ़ी वहां जिक्र में फिक्र में मशगूल लेते थे। इशराक के बाद चाश तक दूसरी इबादत करते। दूसरी इबादत यानी कैसी, बीमार को खबर लेने जाना, माजूर लोगों की मदद करना, कमजोरों के काम करना, मोहताज मिस्कीनों को उनकी मदद करना, जो इल्म सीखने के लिए आए उनको इल्म सिखाना, ईमान सीखने के लिए आए उनको ईमान सिखाना, कोई मसला पूछने आया उसको मसला सिखाना, कोई झगड़े वाले आए तो उनके अंदर फैसला करना, और दुश्मनों से मुकाबला करना है तो उसके सामान की तैयारी। फिर चाश के वक्त पर हुजूर घर में तशरीफ ले जाते और बीवी बच्चे घर वालों के साथ थोड़ा वक्त देते, वो भी एक तरह की इबादत है। फिर खाना खाते और थोड़ी देर दोपहर में आराम फरमाते, दोपहर में आराम करना थोड़ी देर ये भी सुन्नत है। फिर जब जवाल का वक्त होने आता तो हुजूर उठते, इस्तिंजे से फारिग होते, वुजू या गुसल करते, चार रकात नमाज एक सलाम से पढ़ते, उसको फैउस जवाल के नमाज, जवाल के वक्त की नमाज कहते हैं। फिर जोहर की अजान होती तो आप मस्जिद में आके जोहर पढ़ते, फिर जोहर से असर तक वही ईमान सिखाना, इल्म सिखाना, मसले मसाइल बताना, फतवे देना, झगड़ों में फैसले करना, ये सब काम करते। और असर के बाद किबले की तरफ मुंह करके बैठते, जिक्र करते, दुआ वगैरह में मशगूल रहते, और मगरिब के बाद घर तशरीफ लाते, बीवी बच्चों को टाइम देते, मेहमान और मुसाफिरों को खाना खिलाते, और दुनिया का कुछ माल वगैरह आ गया होता तो हुजूर उसको हकदारों में तकसीम करते। ये मगरिब के बाद की हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरतीब होती, और ताकि कोई माल घर में रात में नहीं रहे, इसका खास ख्याल रखते कि रात सोने से पहले माल अल्लाह के नाम पे तकसीम कर देने का। इसलिए मगरिब के बाद लोगों में माल भी हुजूर तकसीम फरमाते। फिर खाना खाते और अपने जानवरों को, पालतू ऊंट बकरी वगैरह को खुद अपने हाथ से चारा दाना डालते, फिर इस्तिंजा करते, वुजू करते, मस्जिद में तशरीफ लाते और ईशा की नमाज अदा फरमाते। फिर ईशा के बाद घर में आकर चार रकात नमाज पढ़ते और वितर तो हुजूर आमतौर पर तहज्जुद के साथ पढ़ते थे। और ईशा के बाद घर आके चार रकात नमाज पढ़ने के बाद कुरान की बहुत सारी सूरत पढ़ते, सूरे जुमोर, सूरे इसरा, सूरे हदीद, सूरे हशरा, सूरे सब, सूरे तगाबुन, सूरे जुमा, सूरे आला, कुल हुवल्लाह, कुल औज़ु बिरब्बिल फलाक, कुल औज़ु बिरब्बिन नास, अल्हम्दु शरीफ, सूरे मुल्क, ये सब सूरत पढ़ते और उसके बाद हुजूर कुछ रात आराम फरमाते और फिर हुजूर तहज्जुद के अंदर उठ जाते थे। ये हुजूर का 24 घंटे का एक टाइम टेबल था, तो उसकी तरफ अल्लाह ताला ने जो है आपको इरशाद फरमाया, इन्नलका फिन्नहारि सबहन तवीला वज़कुर इस्मा रब्बिका वतबत्तल इलैहि तबतीला। देखो आदमी जब जिक्र करे, इबादत करे, तो बिल्कुल ध्यान से इबादत करने की, इस तरीके से इबादत करो कि दिल में अल्लाह के सिवा किसी का ख्याल ना आवे। इबादत इस तरह करो कि ध्यान अल्लाह की तरफ जम जावे, तो फिर उस इबादत और जिक्र और तिलावत का फायदा दिल में रहेगा। तो इबादत करते वक्त सारी झंझटों को छोड़ देने का, मोबाइल जो है ना स्विच ऑफ करने का या साइलेंट करने का, वाइब्रेट भी नहीं करने का, इसलिए कि वाइब्रेट करके नमाज पढ़ेंगे और वाइब्रेशन हुआ तो नमाज में दिल उधर जाएगा। और ऐसी इबादत की बरकत से इंसान गुनाह से दूर होता जाता है और अल्लाह के सिवा की मोहब्बत दिल में से निकलती है और अल्लाह की मोहब्बत दिल के अंदर मजबूत होना शुरू करती है। और वस्कुर इस्मा रब्बिक का एक मतलब ये है कि नमाज पढ़ते वक्त अल्लाह अकबर कहकर के हाथ उठाओ, क्योंकि अल्लाह अकबर कहकर के हाथ उठाने का मतलब क्या, कि हाथ ऊंचे कर दिए कि दुनिया से मुझे कुछ लेना देना नहीं है। जैसे अपनी यहां बोलते हैं कि इसने क्या हाथ ऊंचे कर डाले, तो हाथ ऊंचे करने का क्या मीनिंग, इसने सबसे ताल्लुक तोड़ दिया, तो ये भी एक मीनिंग है कि अल्लाह अकबर कहकर के हाथ उठा करके नमाज शुरू करो, ये भी एक तफसीर है। अल्लाह ताला आपको और मुझको तहज्जुद का पाबंद बना देवे, ध्यान से जिक्र करने वाला बना देवे, अल्लाह अपनी मोहब्बत देवे और गैरुल्लाह की मोहब्बत जो गलत बुनियादों पर हो अल्लाह उससे हमारे दिलों को पाक फरमावे। رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا سورة المزمل کی یہ 9 نمبر کی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پاک ارشاد کا خلاصہ ہے کہ مشرق اور مغرب کے مالک ہے وہی اللہ، ان کے سوا کوئی معبود نہیں، सो उन्हीं को वकील बना लो, वही काम बनाने वाले हैं, अल्लाह ताला को सारे काम सौंप दो, सारे काम हवाले कर दो। सूरत शुरू हुई तो पहली 8 आयतों के अंदर बहुत अहम चीजें इंसान के लिए बयान की गई। नंबर 1, रात में अल्लाह की इबादत के लिए उठना, तन्हाई में इबादत करना। नंबर 2, अल्लाह ताला के कलाम कुरान की तिलावत करना। नंबर 3, हमेशा अल्लाह का जिक्र करना। नंबर 4, अल्लाह ताला के अलावा तमाम चीजों से एराज करना, ताल्लुक को खत्म कर देना, जिसके साथ भी ताल्लुक हो सिर्फ अल्लाह के वास्ते हो। और नंबर 5, अल्लाह ताला के ऊपर भरोसा करना। रब्बुल मशरिकी वल मगरिब, तमाम दुनियाओं को पालने वाले अल्लाह अकेले हैं, तमाम दुनियाओं की तमाम जरूरियात पूरी करने वाले अकेले अल्लाह है, उनके अलावा कोई नहीं है, लिहाजा उसी अल्लाह ताला को काम सौंप दो, सारे काम अल्लाह के हवाले कर दो, सारे कामों के अंदर अल्लाह पर भरोसा करो। देखो तवक्कुल किसको कहते हैं, आजकल लोगों ने तवक्कुल का मीनिंग भी बिगाड़ के रख दिया है, कुछ करना धरना नहीं, कोई मेहनत नहीं करनी, कोई कारोबार नहीं करना, हाथ पे हाथ जोड़ के बैठ जाना और जो है यूं कहना कि हम तो अल्लाह पर भरोसा करते हैं। ये बिल्कुल गलत बात है। तवक्कुल किसको कहते हैं समझो, अल्लाह की जो अल्लाह ने जो हमको ताकत दी है वो ताकत काम करने के लिए लगाओ। अल्लाह ने माइंड पावर दिया है, मगज शक्ति दी है, दिमागी कुव्वत दी है, उसको इस्तेमाल करो। बॉडी में बदन के अंदर ताकत है, उसको इस्तेमाल करो। इस दुनिया में जिस काम को करने के लिए जो असबाब जरूरी होते हैं वो असबाब पूरे तौर पर इस्तेमाल करो। फिर उसके बाद नतीजा रिजल्ट अल्लाह को सौंप दो और फिकर छोड़ दो। और ये जो दुनिया के सामान हैं, असबाब है, साधन सामग्री है, उसके ऊपर बहुत ज्यादा भरोसा मत करो, भरोसा अल्लाह की जात के ऊपर करो। एग्जाम्पल, एक आदमी को बेटा चाहिए तो उसके असबाब क्या, शादी करनी पड़ेगी। शादी के बाद जो है बीवी के साथ अपनी जरूरत पूरी करनी पड़ेगी और दुआ करे, अल्लाह पर भरोसा करे, अल्लाह ताला औलाद अता फरमावे। यह है तवक्कुल। एक आदमी शादी नहीं करता, या ये कि शादी करने के बाद बीवी यहाँ और वो वहाँ साथ में रहता ही नहीं है, फिर कहे कि मैंने अल्लाह पर तवक्कुल किया है कि अल्लाह मुझे बेटा देंगे, तो ये तो पागल जैसा तवक्कुल है। ये जगत, ये दुनिया अल्लाह ने ऐसी बनाई है कि उसके अंदर बंदे को असबाब साधन सामग्री जरूरी चीजें इख्तियार करनी पड़ती है, अपनानी पड़ती है, और उसके बाद बंदा अल्लाह ताला के ऊपर भरोसा करे, दुआ करे, काम बन जाते हैं। एक हदीस जो हजरत अबू जर रदी अल्लाह ताला अन्हु अन्हुम से मनकूल है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसका खुलासा मैं आपको सुनाता हूँ। बाज़ लोग कहते हैं ना कि हमने दुनिया छोड़ दी, दुनिया छोड़ दी, और फिर जो है ना जितनी चीज़ें हलाल है उस हलाल चीज़ों को छोड़ दो, हलाल चीज़ों को हराम समझ लो, जो माल अपने पास है उसको फालतू उड़ा दो। इसका नाम दुनिया छोड़ना नहीं है, बल्कि दुनिया का छोड़ना इसको कहते हैं कि तुम्हारा भरोसा, तुम्हारी नजर उस दौलत के ऊपर हो, उस खजाने के ऊपर हो जो अल्लाह के कब्जे के अंदर है। अपने हाथ में जो चीज है, अपने कंट्रोल में, काबू में जो नेमत है, उससे ज्यादा जो चीज अल्लाह के खजाने के अंदर है उसके ऊपर तुम ज्यादा भरोसा करो। ये है हकीकत के अंदर दुनिया को छोड़ना। मेरे एक बुजुर्ग, वो पहले मदरसे से पगार लेते थे, फिर जाहिर में किसी ने कहा कि हजरत मैं आपको हर महीने इतने रुपये पहुंचाऊंगा, आप जो है पगार लेना छोड़ दीजिए मदरसे से। तो उन्होंने यही बात अल्लाह ने उनके दिल में डाली कि भाई कोई आदमी आकर के अपने कारोबार में से, हलाल रोजी से मुझे हर महीने पैसे दे देवे और उसकी बुनियाद पर मैं मदरसे से पगार लेना छोड़ दूं। तो ये तो उस आदमी पर भरोसा हुआ ने, अल्लाह पर तो भरोसा नहीं हुआ। अल्लाह पर भरोसे का तकाजा किया है कि अल्लाह के खजाने के ऊपर आदमी नजर रखे और जो है अपने हाथ में जो कुछ है उसके ज्यादा अल्लाह के खजाने के ऊपर नजर रखे। आज हम लोग दुनिया में जो हमारे पास दुकान है, कारोबार है, खेती बाड़ी है, और जो हमारे पास बैंक में बैलेंस है उस पर ज्यादा भरोसा करते हैं। नहीं, اللہ کے خزانے میں جو نعمت ہے اس کے اوپر زیادہ بھروسہ کرنے والے بنو. پھر سمجھو کہ توکل کے تین درجے ہیں. پہلا درجہ، پہلا مرتبہ توکل کا، بندے کو اپنے رب پر، اللہ پر ایسا اعتماد اور بھروسہ ہو جاوے جیسے موکل کو وکیل پر بھروسہ ہوتا ہے. کیا میننگ؟ ایک آدمی کا کوئی کورٹ میٹر ہو گیا اور اس نے کوئی وکیل روک لیا، تو اس آدمی کو اپنے وکیل کے اوپر کیسا بھروسہ ہوتا ہے کہ میرا وکیل میری طرف سے کیس لڑے گا، میری طرف داری میری فیور میں لڑے گا، میرے فائدے کے لیے کیس آگے چلائے گا، کیسا بھروسہ ہوتا ہے؟ حالانکہ آج کل تو وکیل بھی سامنے والے وکیل اور سامنے والی پارٹی کے ساتھ اندر کھانے سیٹنگ کر لیتے ہیں، پھوٹ جاتے ہیں، کچھ لے کے جان بوجھ کے ہار جاتے ہیں، ایسے بھی قصے ہوتے ہیں. لیکن عام طور پر کی بات ہے کہ ایک آدمی جس کا کوئی میٹر ہو گیا ہو اور وہ اپنے وکیل کو روکے اور وکیل پر بھروسہ کرے، اور کوئی دوسرے کام کاج کے لیے بھی، جیسے آپ کو کوئی کام ہے اور آپ نے اپنا کام کسی کو سونپ دیا، تو جس کو اپنا کام سونپ دیا وہ وکیل ہو گیا، تو آپ اپنے کام کے بارے میں وکیل پر جو بھروسہ کرتے، ایسا بھروسہ اللہ پر. جیسے کہ کسی کو کہا بھائی ایک کلو گوشت لے آنی میرے لیے، میرے لیے ایک باکس بھر کے آم لے آنی میرے لیے، تو کیسا کسی کو کام سونپا؟ تو جس کو کام سونپ دیا وہ وکیل، تو وکیل پر اپنا بھروسہ کیسا ہوتا ہے؟ اس طریقے کا بھروسہ اللہ پر ہوئے. اور ساتھ میں شفقت اور مہربانی، کہ جس کو میں نے کام سونپا ہے وہ میرے لیے شفقت مہربانی کرے گا، نمبر دو میری بھلائی چاہے گا، اور وہ کام میرا ضرور کرے گا. اس یہ جس کو میں نے کام سونپا ہے، جو میرا وکیل ہے، اس کو کام کرنے کی طاقت بھی ہے، ایسا بھروسہ. نمبر دو، بندے کو اپنے رب کے اوپر ایسا بھروسہ ہو جاوے جیسے ایک ماں کو اپنے جیسے کہ ایک بچے کو اپنی ماں کے اوپر ہوتا ہے، کہ بچہ ماں کے اوپر جیسا بھروسہ کرتا ہے، ایسا بھروسہ بندے کو اللہ پر ہو جائے. نمبر تین، بہت اونچے درجے کا بھروسہ، یہ اللہ کے بہت اونچے بندے کو نصیب ہوتا ہے کہ انسان اللہ کے اوپر ایسا بھروسہ کرے جیسے کہ مردہ غسل دینے والوں کے ہاتھ میں ہوتا ہے، کہ غسل دینے والے مردے کو جب غسل دیتے ہیں تو مردے کا کوئی دخل نہیں ہوتا، وہ غسل دینے والے اس کو ادھر پلٹیں گے، ادھر پلٹیں گے، یوں کریں گے، وہ کریں گے، بس اس طریقے سے. اور بندہ اس مرتبے پر پہنچ کر ایسا ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالی سے سوال بھی نہیں کرتا، بلکہ اللہ کے حوالے سارا معاملہ کر دیتا ہے. جیسے آپ نے قصہ سنا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب نمرود نے آگ میں ڈالا تو حضرت جبرائیل امین آئے، جب آگ میں ڈال رہے تھے تو جبرائیل آئے اور کہا کہ خلیل اللہ، آپ اللہ سے دعا کر دو. روایتوں میں الگ الگ آتا ہے، حضرت میکائیل کے بارے میں بھی کہ بارش کا فرشتہ آیا کہ میں بارش برسا کے آگ ٹھنڈی کر دوں، تو اللہ سے میں دعا کر دوں کہ اللہ مجھے بچا لے وے آگ سے. ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا؟ حسبی من سؤال علمو بحالی मेरे अल्लाह मेरी हालत को जानते हैं, ये मेरे लिए सवाल करने से ज्यादा काफी है। यानी मेरे अल्लाह को मालूम है कि मेरे बंदे को ये जरूरत है, मैं सवाल नहीं करूंगा, अल्लाह जानते हैं, नहीं तो अल्लाह मेरी जरूरत पूरी कर देंगे। ये टॉप क्वालिटी का तवक्कुल है। ये अल्लाह के नेक नेक बंदों को, ऊंचे दर्जे के बंदों को हासिल हुआ करता है। तो यहां आयत के अंदर फरमाया फत्तखिज़हु वकीला, ये नबी को कह करके उम्मत को सुनाना है, इसलिए कि नबी का तो भरोसा अल्लाह पर होता ही है, लेकिन उम्मत को कहना है कि इंसानों ए उम्मतियों, तुम भी नबी अल्लाह पर भरोसा करने वाले बन जाओ जैसे कि नबी को अल्लाह पर भरोसा होता है। ए उम्मतियों, तुम भी अल्लाह पर भरोसा करने वाले बन जाओ जैसे कि नबी को अल्लाह पर भरोसा होता है। तुम भी ए उम्मतियों अल्लाह पर भरोसा करने वाले बन जाओ। वस्बिर अला मा यकूलून वहजुरहुम हजरन जमीला, और वो काफिर लोग जो बात कहते हैं उस पर सब्र करो और खूबसूरती के साथ उनको उनके हाल पर छोड़ दो। यानी मुसलसल ईमान की दावत दी, फिर भी अगर वो ईमान न लावे तो उनको उनकी हालत के ऊपर छोड़ दो, उनके साथ बिल्कुल उनको उनके हाल पर छोड़ दो, उनसे ताल्लुकात छोड़ दो, जबान से उनको बुरा भला भी मत कहो। देखो दुश्मन काफिर मुखालिफीन अल्लाह के नबियों को, अल्लाह के नेक बंदों को तीन तरीके से तकलीफ पहुंचाते हैं, तीन तरीके से, और हर तरीके की तकलीफ के ऊपर नबी को सब्र करना है। नबी के कदम पर चलने वालों को सब्र करना है, दीन का काम करने वालों को सब्र करना है। क्या है वो तीन तरीके की तकलीफ? नंबर एक, नबी के साथ ऐसी दुश्मनी कि जिस अल्लाह ने नबी को नबी बनाया उस अल्लाह के साथ दुश्मनी करने लग जावे। तो बाज मरतबा ऐसा होता है कि नबी के साथ दुश्मनी करने की वजह से जिस अल्लाह ने नबी को नबी बनाया उसके साथ दुश्मनी हो जाए। जैसे एक स्टूडेंट के साथ दुश्मनी हुई तो उसके टीचर के साथ दुश्मनी, एक मुरीद के साथ दुश्मनी हुई तो उसके पीर के साथ दुश्मनी, किसी शागिर्द और तालिबे इल्म से दुश्मनी तो उसके उस्ताद से भी दुश्मनी। आजकल ऐसा भी बहुत हो रहा है। जैसे एक मर्तबा मुझे एक आदमी ने सुनाया, हमारे बारडोली से नवसारी बस जाती है, बस तो बस के अंदर रास्ते में कुछ स्कूलें भी आती है, तो स्कूल के बच्चे बहुत सारे बस के अंदर बैठे हुए हैं और बच्चे बच्चे हैं, धमाल तूफान मस्ती करते हैं। तो एक बड़ी बूढ़ी औरत ने देखा ये बच्चे बहुत धमाल कर रहे हैं, दूसरे पैसेंजर को भी परेशान कर रहे हैं। तो एक बड़ी बूढ़ी औरत खड़े होके बोली, अला निहाल में तुमने आउद बना है, यानी स्कूल में तुमको ऐसी तालीम दी जाती है। देखो वो बच्चों से गुस्सा आया तो सीधा बच्चों की स्कूल के ऊपर अटैक कर दिया। कैसा गलत तरीका है भाई, वो बच्चे धमाल तूफान करते हैं, उसमें स्कूल का और स्कूल वालों का क्या वाक काटने का। इसी तरीके से आजकल ये भी हो रहा है कि भाई कोई आदमी पकड़ा गया किसी काम में तो उसकी कौम को, उसके मदरसे को, उसके जामिया को लोग बदनाम करते हैं, उसके उस्ताज को, पीर को बदनाम करते हैं। तो दुश्मन ये करते थे कि नबी के साथ दुश्मनी, तो नबी को नबी बनाने वाले अल्लाह से भी दुश्मनी, और फिर अल्लाह के लिए उल्टा सीधा बकेंगे, अल्लाह के लिए उल्टी सीधी बातें बोलेंगे, गलत बातें बोलेंगे। जैसे कि हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इन मक्का वालों को और यहूदियों को और मुनाफिकों को दुश्मनी थी, तो वो अल्लाह की शान में गुस्ताखी करते थे, कहने लगे कि नऊज़ु बिल्लाह अल्लाह की बीवी है, नऊज़ु बिल्लाह अल्लाह के बच्चे हैं, नऊज़ु बिल्लाह अल्लाह के पार्टनर है, शैतान अल्लाह से ज्यादा ताकत वाला है कि वो मखलूक को गुमराह करता है। और बाज लोगों ने तो यूं कहा, नऊज़ु बिल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुदा हमारे मोहताज है, कि वो यूं कह रहे हैं कि हम सदका देवे लोगों को खिलावे, अनुतिमु मल्लब यशाउल्लाहु अतआमा, अगर अल्लाह खिलाना चाहता तो खिलाता, ये गरीबों को खिलाने के लिए हमको क्यों कहा। देखो, नबी से दुश्मनी इतनी आगे बढ़ी कि जिस अल्लाह ने नबी को नबी बनाया उसके साथ भी दुश्मनी करके अल्लाह की शान में गुस्ताखी और बेअदबी करना शुरू कर दिया। नंबर दो, ये तो पहली किस्म हो गई। दूसरी किस्म तकलीफ पहुंचाने की ये है कि जिसके साथ दुश्मनी हुई खुद उसकी जात के साथ दुश्मनी करे, खुद उसकी जात के साथ दुश्मनी करे। जैसे कि नबी के साथ दुश्मनी हुई, तो नबी को तकलीफ पहुंचावे, नबी के साथ दुश्मनी नबी को तकलीफ पहुंचाई। जैसे हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुश्मनी हो गई तो हुजूर के बारे में क्या क्या बकवास करते थे, मालिहादर रसूल याकुलु ताम वयमशी फिल अस्वाक लौला उन्ज़िल इलैहि मलक फयकून माहू नदीरा او يلقى اليه كنز او تكون له او تكون تكون له جنه ياكل منها। देखो, नबी के साथ दुश्मनी में क्या कहने लगे कि नबी खाते क्यों हैं, नबी बाजार में क्यों आते हैं, नबी के साथ फरिश्ते क्यों नहीं आते हैं। नबी के साथ दुश्मनी, तो नबी के साथ बकवास चालू कर दी। अजीब, देखो ना, अजीब। और जो है तीसरी शक्ल ये है कि नबी के साथ दुश्मनी हुई तो नबी की फैमिली, बीवी, बच्चे, घर वाले, उनको ताने मारना, उनके साथ दुश्मनी करना। तो दूसरा नंबर ये हो गया कि जिसके साथ दुश्मनी उसको तकलीफ पहुंचाओ, उसको परेशान करो, उसके लिए गलत सलत गंदी मीठी गंदी बुरी बातें बोलो। और तीसरा तरीका ये कि जिसके साथ दुश्मनी हो गई हो उसकी बीवी, उसकी फैमिली, उसके घर वालों के लिए बुरा भला बोलो। जैसे इन मक्का वालों को हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ दुश्मनी थी, मुनाफिकों को दुश्मनी थी, और खैबर फिदक बनु नदीर बनु कुरैज़ा के यहूदियों को दुश्मनी थी, तो वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिश्तेदारों पर और बीवी पर तोहमत लगाते थे। देखो, कुरैश से बायकाट किया, कुरे यानी हुजूर के खानदान वालों से जो शाख थी हुजूर की, कुरैश के नीचे वाली, उनके साथ बायकाट हुआ, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि पाक बीवी उम्मुल मुमिनीन माँ आयशा रदी अल्लाह ताला नहा के ऊपर गलत काम की तोहमत लगाई। देखो तो ये तीन तरीके से इंसान दूसरे इंसान को तकलीफ पहुंचाते हैं। तो अल्लाह के नबी को दीन के खातिर तीनों तरह की तकलीफ पहुंचाई गई। और ऐसा होता रहता है, जो लोग दीन के काम में इखलास से आगे बढ़ते हैं ना, तो उनके उस्तादों को भी लोग गालियां देते हैं, उनके मदरसे को भी लोग गालियां देते हैं, खुद उनकी जात को भी गालियां देते हैं, उनके बीवी बच्चों को भी देते हैं, किसी को नहीं छोड़ते हैं। इसीलिए हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मा ऊदी नबीयुन मिस्ल मा ऊदी तू, मुझे अल्लाह के लिए अल्लाह के दीन के लिए इतनी तकलीफ पहुंचाई गई जितनी तकलीफ किसी नबी को नहीं दी गई। अल्लाहुम्मा सल्ली अलैहि वज़िही अन्ना अफ़ज़ल मा जाज़ैत नबियन उम्मती। कितनी तकलीफ मेरे और आपके प्यारे आका हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उठाई होगी, अंदाजा लगाओ। लेकिन फिर भी अल्लाह क्या फरमा रहे, वाहजुरहुम हजरन जमीला, उनको खूबसूरती के साथ उनके हाल पे छोड़ दो। देखो ये बहुत बड़ी पॉइंट की बात याद रखना, कोई हमको तकलीफ पहुंचावे, बकवास करे, हमारे विरुद्ध लिखे बोले, तो ऐसों की तरफ ध्यान नहीं देने का, अपने काम में लगे रहने का। वो तो चाहते ही है कि हम अपना दीन का काम छोड़ देवे, बिल्कुल नहीं। ऐसे लोगों की तरफ से ध्यान हटाओ और दीन के काम में लगे रहो। ये हजरे जमील अच्छी तरीके से उनको छोड़ देना, उसमें तीन बातें हैं याद रखो। नंबर तीन, जाहिर में उनके साथ उठना बैठना छोड़ दो, उनके साथ ज्यादा ताल्लुक छोड़ दो, दिल से भी उनकी मोहब्बत निकाल दो। नंबर दो, वो लोग जो हमारे साथ गंदा सुलूक करते हैं, गंदा बर्ताव करते हैं, हमको तकलीफ पहुंचाते हैं, उस तकलीफ को लोगों के सामने जाहिर मत करो, उसका बदला लेने के चक्कर में मत पड़ो और जाहिर मत करो उसकी तकलीफ को। नंबर तीन, उनसे जुदाई रखो लेकिन उनको नसीहत करने में कमी मत करो, उनको सही रास्ता बतलाना, उनको दीन की बात बतलाना, उसके अंदर कमी नहीं होनी चाहिए। वदरनी वल मुकद्दिबीन उलिन नामति व महिलहुम कलीला। और तुमको जुठलाने वाले जो ऐश और आराम में पड़े रहते हैं उनके मामले को मुझ पर छोड़ दो और उनको थोड़ी सी मोहलत दे दो। देखो कितनी इंपॉर्टेंट बात बयान फरमाई कि जो लोग मौज मजे के अंदर पड़े रहते हैं, अय्याशी वाली जिंदगी गुजारते हैं, नबी की मानते नहीं है, कुरान पर अमल नहीं करते हैं, तो उनका मामला मेरे हवाले कर दो, मेरे हवाले कर दो, और जो है मैं उनसे निमट लूंगा। अनकरीब अल्लाह उनको सजा देंगे। हाँ, तो ऐसे मुजरिम लोग, ऐसे नाफरमान लोग, ऐसे विरोधी लोग को तकलीफ पहुंचाने के चक्कर में तुमको नहीं पड़ना, उनको बदनाम करने के चक्कर में तुमको नहीं पड़ना, ऐसे लोगों को मेरे हवाले कर दो, मैं उनसे निमट लूंगा, वक्त पर मैं उनको सजा दूंगा। वमहिलहुम कलीला, इस दुनिया में उनको थोड़ी मोहलत दो, थोड़ा टाइम दो, थोड़े राहत आराम में उनको रहने दो, बस आखिरत के अंदर फिर उनके लिए सजा सजा तैयार है। बाज मरतबा दीन का काम करने वाले लोग उकता जाते हैं कि जालिमों को सजा क्यों नहीं होती। अरे भाई, अल्लाह के यहाँ देर है अंधेर नहीं है, वक्त आएगा, अल्लाह सबका हिसाब लेंगे। टेंशन में काय को पड़ते हो, तुम अपना काम करो। अल्लाह ने उनको अजाब और सजा देने के लिए सारी तैयारी कर ली है, फिर तुम क्यों घबराते हो? क्या तैयारी की अल्लाह ताला ने? इन्ना लदैना अंकाल व जहीमा, यकीनन हमारे पास बेड़ियां हैं और भड़कती आग है। अल्लाह ने उनके लिए जहन्नम की बेड़ी हाथ कड़ी बना करके तैयार रखी है। ये रात दिन दुनिया दुनिया मौज मजे अय्याशी में लगे रहते थे और नमाज में खड़े होने से चोर थे, उनके लिए हमने बेड़ियां आग की तैयार कर रखी है और भयानक जहन्नम की आग तैयार कर रखी है। अल्लाहु अकबर, कैसी खतरनाक सजा अल्लाह के यहां ऐसे लोगों के लिए तैयार है। अल्लाह ताला ऐसी सजाओं से हम सबको हिफाजत के अंदर रखे। आगे फरमाया, वतआमन ज़ा ग़ुस्सतिन व अज़ाबन अलीमा, और ऐसा खाना उनके लिए तैयार है जो गले में फंस जाता हो और दर्दनाक अजाब है। देखो, बाज मरतबा खाने का लुकमा है नैनी वाला, वो गले में फंस जाता है, नीचे भी नहीं जाता ने बर भी नहीं आता। जहन्नम के लोगों को अल्लाह ताला जो खाना खिलाएंगे, जरी जक्कूम, वो इतना खतरनाक होगा, गले में फंस जाएगा, नीचे भी नहीं जाएगा, ऊपर बाहर भी नहीं आएगा। और हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रदी अल्लाहु ताला अन्हुमा फरमाते हैं कि आग जहन्नम की, उसके अंदर कांटे होंगे, कांटे जहन्नम की आग में, आग के कांटे बने हुए होंगे, और जब ये लोग जहन्नम का खाना खाएंगे ने, तो वो आग का कांटा गले में फंस जाएगा और उसके अलावा दूसरे खतरनाक अजाब होंगे। अल्लाहुम्मा हफ़ज़ना मिन्हु बिफ़ज़लिक व करमिक व मन्निक या रब्बल आलमीन। यौम तरजुफुल अर्दु वल जिबालु व कानतिल जिबालु कतीबं महीला। अल्लाहु अकबर, कयामत का मंजर तो देखो, अजीब। कयामत के बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया, ये सजाएं उस दिन होगी जिस दिन जमीन और पहाड़ हिलने लगेंगे और सारे पहाड़ उड़ते हुए रेत के टीले हो जाएंगे, या फिसलते हुए रेत के टीले हो जाएंगे, बिखरे हुए रेत के टीले हो जाएंगे। अजीब कयामत का मंजर बयान किया गया। कयामत के अंदर क्या होगा कि ये जो पहाड़ है ना आज बहुत बड़े बड़े, ये तमाम के तमाम पहाड़ चूरा चूरा हो जाएंगे, बिल्कुल चूरा, हवा में उड़ेंगे और चलेंगे, हवा में उड़ेंगे और चलेंगे, अजीब पहाड़ हो जाएंगे। तो जिस तरीके से रेती रेत फिसलती है, इसी तरीके से कयामत के दिन ये बड़े बड़े पहाड़ सब टूट फूट करके, चूरा चूरा हो करके आपस में एक दूसरे के साथ मिल जावेंगे और आपस में कोई अलग जुदाई नहीं रहेगी और फिसलते फिरेंगे। महीला, कतीबम महीला, शायद हमारी गुजराती में इसीलिए औरतों को महीला कहते हैं, यही माने की मुनासबत से। इन्ना अरसलना इलैकुम रसूलन शाहिदन अलैकुम कमा अरसलना इला फिरऔन रसूला। वाह वाह, यकीनन हमने तुम्हारी तरफ, अल्लाह ताला के यहां तुम पर गवाही देने वाले रसूल को भेजा है, जैसा हमने फिरौन की तरफ रसूल भेजा था। अल्लाह अकबर। ए मक्का वालों, ए इंसानों, हमने तुम्हारे पास आखिरी नबी भेज दिए, हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये नबी कयामत के दिन गवाही देंगे कि नबी ने जब तबलीग की, नबी ने अल्लाह का दीन पहुंचाया, कुरान पहुंचाया, तो तुमने नबी के साथ कैसा गंदा बर्ताव किया। ये नबी कयामत के दिन गवाही देंगे, हमने फिरौन के पास भी एक रसूल भेजा था और वो रसूल थे हजरत मूसा अला नबीना व अलैहि सलातु वस्सलाम। तो देखो अल्लाह ताला मिसाल दे रहे हैं इस उम्मत को, अल्लाह सुबहानहु व ताला मिसाल दे रहे हैं, नमूना बतला रहे हैं। जैसे कहते हैं ना कि भाई उसने बात मानी, इस तरह मानी, इस तरह मानी, तो उम्मत मोहम्मदिया को फिरौनियों की बात सुनाई जा रही है और फिरौनियों की बात सुना करके उम्मत मोहम्मदिया को नमूना बतलाया जा रहा है कि जैसे मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने नबी बना के भेजा था और मूसा अलैहिस्सलाम बनु इसराइल के रसूल थे, साथ में फिरौनियों को भी अल्लाह की बात पहुंचाते थे, तो इस तरीके से आखिरी नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ गए, अब तुम उनकी बात पर ईमान ले आओ वरना वो कयामत के दिन गवाही देंगे, साक्षी बनेंगे कि अल्लाह मेरी उम्मत ने जो है मेरी बात मानी नहीं थी, कुरान को माना नहीं था। आगे फरमाया फअसा फिरऔनुर रसूल फअखज़नाहु अख़ज़न वबीला। सो फिरौन ने रसूल का कहना नहीं माना तो हमने उसको ऐसा पकड़ लिया जो उसके लिए एक जबरदस्त वबाल था। फिरौन ईमान नहीं लाया हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के ऊपर, तो अल्लाह ने ऐसा पकड़ा, ऐसी सजा दी जिसमें वबाल था। वबाल अपने ही बोलते हैं ना, बड़ा वबाल हो गया आज तो, यानी फिरौन उसका पूरा लश्कर पानी में डूब गया, उसकी हुकूमत, सरकार, सत्ता, माल दौलत, बाड़ियां, सोना चांदी, सारा सामान एकदम अल्लाह ने उनके दुश्मन बनु इसराइल को दे दिया। हालांकि फिरौन बहुत बड़ी सरकार का मालिक, बहुत बड़ी मिलिट्री आर्मी का मालिक, लेकिन अल्लाह की नाफरमानी की तो अल्लाह ने एकदम उसको पकड़ करके हला को बर्बाद कर दिया। अल्लाहु अकबर। अगर ये मक्का वालों, ये आखिरी उम्मत के लोगों, अगर तुमने हमारे आखिरी नबी मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं माना तो हम भी तुमको ऐसे अजाब में मुब्तला करेंगे। और फर्क है हजरत मूसा में और हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में, क्या फर्क है कि हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तुफेल में ये उम्मत आम अजाब से बच गई, वरना पिछले जमाने में नबियों की उम्मत उमूमी अजाब में गई, हलाक हो गई, लेकिन ये उम्मत उमूमी अजाब से बच गई। हाँ आखिरत में अजाब है, सजा है। फरमाया फकैफ तत्तकून इन कफरतुम यौमन यजअलुल विल्दान शीबा। सो अगर तुम कुफ्र के ऊपर रहे तो उस कयामत के दिन के अजाब से कैसे बचोगे जिस दिन बच्चों को बूढ़ा बना देगा, यानी कयामत के दिन लंबे वक्त की वजह से बच्चे बूढ़े हो जाएंगे। इसलिए कि दुनिया के अंदर एक बच्चा पैदा हुआ, फिर 60-70 साल का हुआ तो बुढ़ा हुआ और बाल सफेद, कयामत का तो एक दिन 50,000 साल का, 1,000 साल का, तो लंबा दिन, लंबा टाइम। इसलिए वो बच्चा लंबा टाइम होते 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 बुढ़ा होके सफेद बाल वाला हो जाएगा। या ये कि उस दिन ऐसे खतरनाक मंजर देखेगा, सीन देखेगा कि उसको देखकर ऐसा घबराएगा, ऐसा घबराएगा कि वो बुढ़ा हो जाएगा। और बाद हजरात कहते हैं कि काफिरों की नाबालिग औलाद जब अपने माँ बाप को, भाई बहनों को, अपने रिश्तेदारों को जहन्नम और सजा में देखेंगे, तो इस मंजर को देख करके उन काफिरों के नाबालिग बच्चों के बाल सफेद हो जाएंगे। यानी काफिरों के नाबालिग बच्चे जो इंतकाल कर गए थे, वो कयामत के दिन अपने खानदान वालों के बुरे हालात देखेंगे कि वो अजाब में है, जहन्नम में है, तो ये मंजर देख करके उनके बाल बूढ़े हो जाएंगे, सफेद हो जाएंगे। फिर वो बच्चे जो है बहुत जन्नत के अंदर जाएंगे, जन्नतियों की खिदमत करेंगे। इसलिए कि इनके माँ बाप तो काफिर थे, इसलिए वो रो रहे होंगे, चिल्ला रहे होंगे, बच्चा देख रहा है लेकिन उनको बचा नहीं पाएगा। फिर जब जन्नत के अंदर पहुंच जाएगा तो फिर अपने माँ बाप को और खानदान वालों को भूल जाएगा और फिर वो जन्नत में मजे से रहेगा। तो काफिरों के बच्चे मुराद है कि वो अपने माँ बाप की, भाई बहनों की सिफारिश भी नहीं कर सकेंगे और भयानक मंजर देखेंगे और उनको बहुत गम होगा, उनको रोता चिल्लाता देखेंगे तो इस बच्चे को बहुत गम होगा। बहरहाल जन्नत में जाने के बाद सबको भूल जाएगा। नंबर तीन, एक कमजोर कौल ये है कि इसमें जीना वाली औलाद मुराद है। बच्चे जो जीना के हैं ने, वो बच्चे जो है उनके बाल बूढ़े हो जाएंगे। अस्समाउ मुनफतिरुम भी, देखो जब किसी को सजा दी जाती है ने, तो आप दुनिया में देखो लो, उसके घर को भी तोड़ दिया जाता है, डिमोलिश कर दिया जाता है कि ये बड़ा आतंकवादी था, बड़ा जालिम था, बड़ा जो है पापी था, लिहाजा उस पर केस चला, उसकी प्रॉपर्टी जब्त हुई, बाद में उसकी प्रॉपर्टी तोड़ दी गई और उसकी जमीन पर भी कब्जा, जमीन खोद डाली। तो कयामत के दिन भी ऐसा ही होने वाला है, सुन लो। अस्समाउ मुनफतिरुम भी कान वादुहु मफ़ूला, उस दिन में आसमान फट पड़ेगा, उस अल्लाह ताला का वादा पूरा होकर रहेगा। आसमान फटेगा तो जमीन भी चूरा चूरा हो जाएगी, वो भी खत्म। गोया कि इन गुनहगारों ने जहां गुनाह किए वो जगह भी खत्म कर दी जाएगी, ऐसा भयानक अजाब आएगा। और अल्लाह ताला का जो वादा है ने, वो पूरा होके ही रहता है और होके ही रहेगा, उसके अंदर जो है ना कोई इधर उधर की बात है ही नहीं। इन्ना हादिही तज़किरा फमन शाअ अत्तखज़ इला रब्बिही सबीला, यकीनन ये एक नसीहत की बात है, अब जो चाहे अपने रब की तरफ पहुंचने का रास्ता यानी दीन इस्लाम को अपना लेवे, कबूल कर लेवे, इस्लाम को मान लेवे। ये ओपन नसीहत कर दी गई, खुल्लम खुल्ली नसीहत इस सूरे मुज़म्मिल में, पूरे कुरान के अंदर बस नसीहत ही नसीहत आ गई। अब अपने नफ्स के साथ मुजाहदा करो और हमेशा जिक्र में रहो, अल्लाह की इबादत के लिए फारिग हो जाओ और जो है अमल करने वाले बन जाओ। यहां कुरान को कहा गया तस्कीरा, यानी याद दिलाने वाली चीज। देखो याद दिलाने वाली चीज क्या होती है, जो पहले से हम जानते थे लेकिन भूल गए थे। तो बिल्कुल ऐसा ही है, अल्लाह ताला ने इस दुनिया में आने से पहले आलमे अरवाह में, रूहों के जगत के अंदर हम अपने अल्लाह को पहचानते थे, लेकिन दुनिया में आकर के, दुनिया के चक्करों में पड़ के अल्लाह को भूल गए। तो अब याद करो, कुरान याद करा रहा है, नबी याद करा रहे हैं कि भाई अपने अल्लाह को याद करो, कुरान को याद करो। तुम लोग इस दुनिया में आने से पहले रूह के जगत में थे, वहां अपने अल्लाह को पहचानते थे। वइज अखदा रब्बुका मिन बनी आदम मिन ज़ुहूरिहिम ज़ुर्रियतहुम वअशहदहुम अला अन्फुसिहिम अलस्तु बिरब्बिकुम कालू बला, جب اس دنیا سے پہلے روحوں کی جگت میں، روحوں کی دنیا میں اللہ نے تمام روحوں کو جمع کیا تھا اور سوال کیا اللہ نے، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب سے پہلے میرے اور آپ کے پیارے آقا تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح اقدس نے جواب دیا، بلا آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ پھر حضور کو دیکھا دیکھی تمام نبیوں نے جواب دیا، نبیوں کو دیکھا دیکھی تمام انسانوں نے جواب دیا، ارے انسانوں تم روح کے جگت میں اللہ کو جان کے آئے ہو، مان کے آئے ہو، اب دنیا میں آ کر دنیا کی گندگیوں میں جانور جیسے ہو گئے، لو یہ قرآن تم کو یاد دلا رہا ہے کہ اللہ کے ہو جاؤ، اللہ کی عبادت کرنے والے بن جاؤ، اسلام کو قبول کر لو، ایمان کے اوپر آ جاؤ۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات آیت میں فرمائی گئی، ان ربک یعلم انک تقوم ادنا من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله ان اللہ غفور الرحیم۔ یہ 20ویں آیت ہے سورہ مزمل کی، ذرا لمبی آیت ہے۔ ترجمہ، اے نبی یقیناً تمہارے رب جانتے ہیں کہ تم دو تہائی رات کے قریب اور کبھی آدھی رات اور کبھی ایک تہائی رات تہجد پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہو، اور تمہارے ساتھیوں میں سے بھی ایک جماعت ایسا ہی کرتی ہے۔ سبحان اللہ، صحابہ کی عبادت کیسی ہوگی کہ اللہ نے نبی کی عبادت کے ساتھ صحابہ کی عبادت کا ذکر کیا، یہ صحابہ کی کتنی بڑی فضیلت ہو گئی۔ اور رات اور دن کی صحیح مقدار تو اللہ تعالیٰ ہی مقرر فرماتے ہیں، رات اور دن کا پورا اندازہ تو اللہ تعالیٰ ہی کر سکتے ہیں۔ اس اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ تم اس کا صحیح حساب ہرگز نہیں رکھ سکو گے، اسی لیے اس اللہ تعالیٰ نے تم پر عنایت فرمائی، مہربانی فرمائی۔ اب تم قرآن میں جتنا آسانی سے پڑھ سکو پڑھو، وہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ تم میں سے کچھ لوگ بیمار ہوں گے اور دوسرے کتنے لوگ ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کا فضل یعنی حلال روزی ڈھونڈنے کے لیے زمین میں سفر کر رہے ہوں گے، اور دوسرے بعض لوگ اللہ تعالیٰ کے راستے میں قتال اور جنگ کرتے ہوں گے۔ لہذا اب تم اس قرآن میں سے جتنا آسان ہو اتنا پڑھ لیا کرو۔ دیکھو، پہلے تہجد فرض تھی، اس کے لیے کوانٹیٹی، مقدار اور ماترا وہ بھی متعین تھی، بعد میں اللہ نے آسان کر دیا، جتنا ہو سکے اتنا تہجد پڑھو اور جتنی ہو سکے اتنی عبادت کرو۔ دیکھو، اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا ہم کو اس دنیا میں پیدا کیا اور بہت ساری ضروریات ہمارے ساتھ لگائی، اور ان ضروریات کو سامنے رکھ کر شریعت کے اوپر عمل کرنے میں اللہ نے آسانی بھی رکھ دی۔ دیکھو، انسان کو زمین میں سفر کرنا پڑتا ہے، تو سفر کی وجہ سے کتنی آسانی کر دی، نمازیں آدھی ہو جاتی ہے، سفر ہمہ ہمی کا ہے تو سنت نفل مت پڑھو، کتنی آسانی کر دی، سفر ہے تو جمعہ مت پڑھو، کتنی آسانی۔ آدمی حلال روزی میں جاوے، اسی طریقے سے دنیا میں بیماری لگتی ہے تو بیماری کی وجہ سے اللہ نے کتنی آسانی کر دی کہ چاہے بیٹھ کے نماز پڑھو، چاہے سو کے نماز پڑھو۔ इसी तरह आदमी अल्लाह के नाम पर जंग करने के लिए जाता है, उसकी वजह से भी कितनी आसानी कर दी। तो इस जगत को, इस दुनिया के अंदर इंसान की अल्लाह ने बहुत सारी जरूरत रखी, तो जरूरत को सामने रखकर शरीयत में अमल करने की आसानी, उसकी गाइडलाइन, उसका तरीका, उसकी हिदायत भी अल्लाह ने दे दी। और आगे फरमाया, और तुम नमाज कायम करो और जकात देते रहो और तुम अल्लाह ताला को अच्छे तरीके से कर्ज दो, और जो नेकी तुम अपने लिए आगे भेज दोगे उसको अल्लाह ताला के पास पहुंचकर बेहतर हालत में और बड़े सवाब की शक्ल में पाओगे। अल्लाह के नाम पे खर्च किया, अच्छे काम किए, नेक काम किए, वो अल्लाह के यहाँ है, सलामत है, जमा है, उस पर अल्लाह बहुत बड़ा सवाब जन्नत में देंगे। और तुम अल्लाह ताला से माफी मांगते रहो, यकीनन अल्लाह ताला बड़े माफ करने वाले, बड़े रहमत वाले हैं। बहुत सारे नेक आमाल के साथ इस्तिगफार का हुक्म है, जैसे कुरान के नमाज के अंदर भी हम आखिर में क्या करते हैं, اللهم اني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب الا انت فاغفر لي، یہ استغفار۔ معلوم ہوا کہ کوئی انسان اللہ کی عبادت کا حق ادا نہیں کر سکتا، اسی لیے عبادت کے ساتھ استغفار کرنے کا حکم دیا گیا کہ اللہ کی عبادت کرو، اور عبادت کرنے کے ساتھ ساتھ तुम अल्लाह की बारगाह के अंदर इस्तिगफार भी करने वाले बनो। ये तुम्हारा इस्तिगफार अल्लाह ताला को बहुत प्यारा है, बहुत पसंद है, उस गफूर और रहीम को बहुत मेहरबान अल्लाह को हमारा इस्तिगफार बहुत पसंद है। देखो, सूरह मुज़्ज़मिल शुरू हुई थी तो अल्लाह ताला ने हमको हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तहज्जुद पढ़ने का हुक्म दिया। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा तहज्जुद में बहुत मशगूल हुए, इतने लगे कि रात का सोना छोड़ दिया। और उस जमाने में घड़ियां नहीं थी, तो आधी रात, एक तिहाई, तृतीयांश रात इबादत फिक्स करना मुश्किल। तो फिर इनको ये डर लगता था कि भाई अल्लाह ने आधी रात इबादत करने के लिए कहा और हम इबादत में आधी रात नहीं कर सके, टाइम में कुछ कम ज्यादा हो गया। तो उन लोगों ने ऐसा किया कि पूरी पूरी रात इबादत चालू कर दी कि भाई अपने को फिक्स टाइम का पता चलता नहीं है, तो कहीं हमसे इबादत में कमी नहीं हो जावे, तो इससे अच्छा ये कि अच्छी रात इबादत करो। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा के पांव सूजने लगे, पैर पर वरम आ गया। 8 महीने और या 12 महीने तक ये हुक्म रहा। फिर अल्लाह ताला ने आसानी फरमा दी और फरमा दिया कि भाई ए मेरे बंदो, तुम इबादत करो, हमने आसानी कर दी, तहज्जुद पढ़ो, लेकिन पूरी रात भी जागना जरूरी नहीं, आधी रात भी फिक्स नहीं, 1/3, 1/3, 1/3 रात भी फिक्स नहीं, और इतनी रकात पढ़ना भी फिक्स नहीं, जितना कर सको इतना करो, कुछ न कुछ इबादत रात के अंदर कर लिया करो। अरे आखिरी दर्जे के अंदर मगरिब, ईशा, फजर तीनों जमात के साथ पढ़ लो, कितनी आसानी फरमा दी। और ये आसानी आ गई कि इबादत करो। अब सहाबा ने अपनी अपनी ताकत, अपनी अपनी कैपेसिटी के मुताबिक इबादत की। आसानी का हुक्म आने के बाद भी सहाबा ने अपनी अपनी कैपेसिटी के मुताबिक ज्यादा से ज्यादा इबादत की। जैसे कि हम लोग दुनिया कमाने के लिए अपनी कैपेसिटी के मुताबिक कारोबार करके दुनिया कमाते हैं कि भाई अभी कमाने की सीजन है, रात को उजागरे भी कर लो ने धंधा कर लो। इस तरह सहाबा ने अपनी कैपेसिटी, अपनी ताकत, बल्कि उससे ज्यादा अल्लाह की इबादत की, हालांकि अल्लाह ने आसान कर दिया। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर रदी अल्लाह ताला अनुमा को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
तहज्जुद की नमाज में रोज़ाना एक सुपारा पढ़ने का, एक सुपारे की मकदार, और एक महीने में कुरान पूरा कर लेने का। तो हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने उमर रज़ी अल्लाह तआला ने कहा, हुज़ूर मेरे अंदर और ज़्यादा ताकत है, मुझे और इबादत का शौक है। चलो अच्छा, सात दिन में, हफ्ते में, अठवाड़िए में तुम जो है एक कुरान तहज्जुद में पढ़ लिया करो। हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह तआला ने रोज़ाना रात में 1000 आयतें तहज्जुद में पढ़ते थे। देखो, सहाबा ने अपनी ताकत के मुताबिक अमल किया। इसीलिए मैं आपको कहता हूं कि अपनी अपनी ताकत को हम खुद जानते हैं, उसके मुताबिक अल्लाह के लिए रात में इबादत करो। और बाद अल्लाह वाले फरमाते हैं कि सूरह बकरा की आखिरी आयत तहज्जुद की नमाज में पढ़ लो, ये काफी है, आमन और रसूल से खत्म तक। एक दिन हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को यूं फरमाया कि हर रात में एक तिहाई कुरान यानी 10 सुपारे पढ़ा करो। साहबा ने कहा, हुजूर ये तो हर रात में 10 सुपारे जितना कुरान बहुत मुश्किल है, यानी एक तिहाई पढ़ना। ये 10 सुपारे मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूं। तो साहबा ने कहा कि हमको बहुत मुश्किल लगता है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुल हुवल्लाह पढ़ लो ना रात को तहज्जुद में। तो कुल हुवल्लाह पढ़ोगे तो 10 सुपारे पढ़ने जितना सवाब अल्लाह ताला अता कर देंगे। इसीलिए बुजुर्गों ने लिखा है कि तहज्जुद के अंदर कुल हुवल्लाह वहद की सूरत खूब पढ़नी चाहिए। और उसका एक तरीका ये बतलाया कि पहली रकात में अल्हम्दो के बाद एक मरतबा सूरे 12 मरतबा कुल हुवल्लाह पढ़ो। पहली रकात में अल्हम्दो शरीफ के बाद 12 मरतबा कुल हुवल्लाह पढ़ो। दूसरी रकात में अल्हम्दो के बाद 11 मरतबा पढ़ो। इस तरीके से 12वीं रकात जो तहज्जुद की आएगी उसके अंदर एक मरतबा कुल हुवल्लाह होगा। तो हर रकात में एक एक मरतबा घटाते जाओ। तो अल्हम्दो के बाद पहली रकात में 12, दूसरी रकात में 11, फिर आगे सलाम फिरा के दूसरी दो रकात पढ़ेंगे तो तीसरी होगी, उसके अंदर 10 मरतबा। इस तरह हर रकात में एक 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 घटाते जाने का, ये भी एक तरतीब बतलाई है। दूसरी एक तरतीब ये है कि हर रकात में अल्हम्दो के बाद 3 मरतबा कुल हुवल्लाह पढ़ लो तो पूरा कुरान मुकम्मल करने का अल्लाह ताला सवाब अता फरमा देंगे। ये भी एक तरीका है। लेकिन पढ़ो भाई, पढ़ो कुछ तो कुछ पढ़ो रात में। वल्लाहु युकद्दिरु लैल वन नहार, ये दिन रात की जो टाइमिंग है ना, ये टाइमिंग, ये अल्लाह ताला का एक अजीब व गरीब निजाम है। देखो, 6 महीने तक रोजाना रात कम होती है और दिन बढ़ता है। फिर दूसरे 6 महीने ऐसे आते हैं कि दिन बढ़ता है, रात कम होती है। पूरे साल के अंदर दिन और रात बिल्कुल सेम टू सेम हो, सेकंड सेकंड, मिनट मिनट, ऐसा नहीं होता। कुछ न कुछ कम ज्यादा जो है होता रहता है। इसलिए अल्लाह ताला के यहां जो निजाम है, उस निजाम के मुताबिक इंसान को अल्लाह की इबादत करना चाहिए। अलिमा लन तुसु, कि टाइम को तय करना और फिक्स करना कि भाई आधी रात इबादत करने की, ये इंसान के लिए बहुत मुश्किल है। और खुसूसन पुराने जमाने में जब घड़ियाल नहीं थी तो टाइम वगैरह फिक्स करना बहुत मुश्किल था। इसीलिए अल्लाह ताला ने आसानी फरमा दी। फताबा अलैकुम, ताबा के माने क्या आते हैं? लौटना, यानी आरजी काम चलाओ हालत से असली हालत की तरफ आना। और जब इंसान और बंदों के लिए बोला जाता है तो उसका माना यह है, गुनाह छोड़ो और अल्लाह की बंदगी की तरफ आ जाओ। यहां भी, और अल्लाह ताला ने यहां हमारी तरफ तवज्जो फरमाकर सहूलत और आसानी कर दी, ये मुराद है। इसीलिए एक हदीस में आता है, रकअतानी फी जौफिल लैल खैरुम मिनद दुनिया वमा फीहा, रात की अंधेरियों में 2 रकात नमाज पढ़ना दुनिया और दुनिया की तमाम नेमतों से बहुत बेहतर है। इसीलिए कम से कम रात में दो रकात तो तहज्जुद की पढ़ लिया करो, पढ़ना चाहिए। आलिम अन सयकून मिनकुम मरदा, बीमारियों के अंदर आदमी एक आयत भी नहीं पढ़ सकता, सफर की थकान की वजह से भी नहीं पढ़ सकता, सफर हलाल रोजी का हो या अल्लाह के रास्ते में किताल और जंग का हो, तो उसके लिए अल्लाह ताला ने आसानी फरमा दी कि भाई उन दिनों में अगर तुम मुख्तसर पढ़ लोगे, कम पढ़ लोगे, तो भी अल्लाह बड़ा सवाब अता फरमा देंगे। कितने बड़े अल्लाह ताला। देखो बीमारी पहले नंबर पर आई, इसलिए कि बीमारी इंसान के इख्तियार में नहीं है और रोजी रोटी इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है, इसलिए उसका नंबर दूसरे नंबर पर आया। और फिर अल्लाह के रास्ते के अंदर किताल का जिक्र आया, तो रोजी रोटी का भी बड़ा लिहाज रखा गया हमारी शरीयत में। और फिर फरमाया वाकिमुस्सलाह, इमकामत के माने आते हैं किसी चीज़ को ठीक करना, यानी इस तरीके की नमाज पढ़ो कि दिल जुबान ध्यान पूरी बॉडी अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हो। और माल की मोहब्बत निकालने के लिए जकात दो। जकात, जकात मक्का में फर्ज हो गई थी लेकिन उसकी डिटेल हिजरत के दूसरे साल में आई और उसकी पूरी तफसील हिजरत के बाद बताई गई। वह अकरिदुल्लाह करदन हसना, और अल्लाह ताला को अच्छा कर्ज दो। क्या मतलब अल्लाह ताला को अच्छा कर्ज देने का? कि जो आदमी अल्लाह के लिए खर्च करता है वो अल्लाह को कर्ज दे रहा है। देखो अल्लाह कितने मेहरबान कि बंदा जो अल्लाह के नाम पर खर्च करता है उसको अल्लाह ताला कर्ज कह रहे। और दुनिया में किसी को कर्ज देते हैं तो कर्ज देने के बाद वापस देगा कि नहीं देगा, खा जाएगा, हाथ ऊंचे कर डालेगा, पार्टी उठ गई और दुकान के शटर पड़ गए, ऐसा अल्लाह के यहाँ नहीं होता है। अल्लाह ताला गनियों के गनी है। जो कुछ तुम अल्लाह के नाम पे खर्च दोगे ना, खर्च करोगे ना, अल्लाह के यहाँ जरूर सवाब मिल करके ही रहेगा। इसमें नफिल सदकात भी आ गए, रिश्तेदारों को देना भी आ गया, मेहमानों पर खर्च करना भी आ गया, आलिमों को नेक लोगों को देना भी आ गया, माँ बाप का खर्चा भी आ गया, बीवी बच्चों का खर्चा भी आ गया, सब चीजें उसके अंदर आ गया। वाकरिदुल्लाह करदन हसना। देखो अल्लाह के जो मोहताज बंदे हो ना, उनको कर्ज दो और कर्ज जरूरत के वक्त पर दो और व्याज मत लो। उनको कर्ज देकर उनसे कोई फायदा मत लो कि कर्ज देकर के फिर उनको ब्लैकमेल करे और उनका फायदा उठावे, उनका शोषण करे, ऐसा मत करो। फिर कर्ज के पैसे मांगे ने वापिस तो बहुत सख्ती और कड़काई नहीं करने की, और जो है टाइम से पहले नहीं मांगने का, उसके ऊपर एहसान नहीं जताने का। अगर वो बेचारा गरीब कर्ज में से कुछ कम वापिस देवे तो छोड़ देने का, टाइम में वायदे में देरी हो जावे तो बहुत सख्ती नहीं करने की बल्कि उसको माफ कर देने का, मोहलत देने की। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब मैं मेराज में गया तो जन्नत के दरवाजे के ऊपर लिखा हुआ देखा, जो लोग अल्लाह के रास्ते में एक दिरहम खैरात करते हैं तो अल्लाह ताला उसके लिए 10 दिरहम का सवाब लिखा जाता है, और जो आदमी अल्लाह के वास्ते 1 दिरहम कर्ज देता है तो उसके लिए 18 दिरहम का सवाब लिखा जाता है। देखो अजीब हदीस सुनो कि हुजूर ने मेराज की रात में जन्नत के दरवाजे पर क्या पढ़ा कि अल्लाह के रास्ते में खैरात करोगे 1 दिरहम तो 10 दिरहम का सवाब मिलेगा और कर्ज दोगे तो 18 दिरहम का सवाब मिलेगा। तो कहा मैंने जिब्राइल को पूछा कि अल्लाह के रास्ते में खैरात करने से ज्यादा कर्ज देने का सवाब है, तो हजरत जिब्राइल अमीन ने जवाब में मुझे समझ कहा, ए अल्लाह के प्यारे नबी, जो आदमी अल्लाह के रास्ते में खर्च करता है तो वो खर्च किया हुआ माल कभी मोहताज को पहुंचता है और कभी जो मोहताज नहीं होता है उनको पहुंच जाता है। आज ऐसा ही हाल है, हम खर्च करते हैं, सदका करते हैं, देते हैं, तो कभी वो सामने वाला मोहताज होता है, कभी मोहताज नहीं है फिर भी लेता है। आज दुनिया में लोगों की आदत पड़ रही है ले 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 करो, जो भी देवे वो ले लो। تو بعض مرتبہ محتاج کو پہنچتا ہے, بعض مرتبہ محتاج نہیں ہوتا ہے اس کو پہنچتا ہے. لیکن قرض جو ہوتا ہے نا وہ محتاج آدمی مانگتا ہے. اس لیے ضرورت مند آدمی, محتاج آدمی جو واقعتاً ضرورت میں ہو اس کو قرض دو, اس کا ثواب زیادہ ہے. باقی فالتو قرض دینے کے نہیں. جیسے کہ آج لوگ جو ہے نا بڑی دھماکے دار شاندار شادیاں کرنے کے لیے قرض مانگنے نکلتے ہیں, نئی نئی گاڑیوں میں وٹ مارنے کے لیے قرض مانگنے نکلتے ہیں. ایسوں کو اوچھینے نہیں دینے کے, قرض نہیں دینے کے بھائی. ہاں دنیا میں بہت ضرورت مند لوگ موجود ہیں, ان کا خیال کرو. اور نفل نماز, روزہ, صدقہ, رات کو تہجد, سب جو عبادت بھی کرو گے اللہ کے یہاں اس کا ثواب ملے گا. اور جو ہے ایک مرتبہ ایک حدیث, عجیب حدیث میں سنا دو آج سورت کو ختم کرتے کرتے. ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سوال کیا کہ تم میں سے کون آدمی ہے کہ جس کو اپنے مال سے زیادہ اپنے وارث داروں کے مال سے محبت ہو, اپنے مال سے زیادہ اپنے وارث دار کے مال سے محبت ہو. تو سب صحابہ کہنے لگے حضور ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے. آدمی کو اپنے مال سے محبت زیادہ ہوتی, وارث دار کے مال سے تھوڑی زیادہ محبت ہوتی ہے. جب کمپیئر ہو, تلنا ہو, تلنا کمپیئر تقابل ہو کہ آدمی کو اپنے مال سے محبت یا وارث دار بیٹے بیٹی کے مال سے محبت, تو آدمی کو اپنے مال سے زیادہ محبت ہوتی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذرا سوچ سمجھ کے بات کرو. تو صحابہ نے عرض کیا کہ ہمیں تو اس کے سوا کوئی اور بات سمجھ میں نہیں آتی, ہم کو اپنے مال سے زیادہ محبت ہے وارث داروں کے مال کے محبت میں, محبت کے مقابلے میں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا اپنا مال وہ ہے جو تم نے اپنے ہاتھ سے اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا, اور جو مال تم نے چھوڑا وہ تمہارا نہیں ہے بلکہ تمہارے وارث دار کا مال ہے. اسی لیے اللہ کے نام پہ خیرات کرو, اور جو ہے بہت وارث داروں کے لیے بچانے کی فکر مت کرو, وہ اپنے نصیب کا کھائیں گے. وارث داروں کے لیے بھی مال چھوڑنا یہ ثواب ہے, لیکن ان کے لیے مال چھوڑنے کے چکر میں آدمی خود خیرات نہ کرے, صدقہ نہ کرے, یہ بہت بڑی بیوقوفی کی بات ہے. آپ نے اپنی محنت سے, ہمارے حضرت مفتی احمد صاحب خانپوری دامت برکاتہم فرمایا کرتے ہیں, آدمی نے اپنی محنت سے کمایا, اپنے پسینے سے, وہ خرچ اپنے ہاتھ سے نہیں کرتا اور پھر یوں امید اور آسا رکھے کہ میرے مرنے کے بعد میری اولاد میرے لیے صدقہ جاریہ کرے, تو ایسا سوچنا تو گانڈے جیسا سوچنے کا ہے. اپنے ہاتھ سے جتنا ہو اللہ کے نام پہ خرچ کر لو, وارث داروں کے لیے بھی چھوڑو. اور آخری آیت میں اللہ نے استغفار کے لیے فرمایا. استغفار کیسا ہے؟ جیسے کہ گندا آدمی صابن سے نہاوے, شیمپو سے ناوے, اس طریقے سے ہیں استغفار. انسان گنہگار ہے, گناہوں کی گندگی لگتی رہتی ہے, بار بار استغفار کرے گا, بار بار توبہ کرے گا تو گناہوں سے ایک دم پاک, پوتر, صاف ستھرا, چوکھا ہو جائے گا. اس لیے بار بار اللہ سے استغفار کرو. اللہ ہم سب کو اس کی توفیق اور سعادت عطا فرماوے.